ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच, निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः, दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरान्। ऋषिर्वाच, माखिदो राजपुत्रित्थाम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते, भगवांस्तेक्षरो गर्भाम् अदुरात् सम्प्रपत्स्यते। मैत्रेय जी कहते हैं, निर्वेदवादिनी वैराग्य की बात करने वाली एवं पूर्वोक्त प्रकारेण मनोह दुहितरा, मनु महाराज की पुत्री से मुनि ही कर्दम मुनि दयालु, जिनका स्वभाव है दया करना, शालिनी प्रशंसनीय, आह बोले, शुक्ला भी व्याहृतम, भगवान ने जो कहा था मैं अपने अंश से आपका पुत्र बनूंगा इत्यादि, स्मरण करते हुए, तो देवहूति के वैराग्य परक वचन हम लोग कल सुन रहे थे। इस प्रकार का सफल जीवन होने पर भी देवहूति खेद कर रही थी, अपने महान पति कर्दम जी का संपर्क पाकर भी, साथ पाकर भी वह इंद्रिय के भोगों में आसक्त रही, इस बात का देवहूति को बहुत बड़ा खेद है। दो पक्ष है मनुष्य के क्रियाकलापों का, सोचने विचारने का, एक तो माया जगत से अतीत भगवान के रूप गुण लीला आदि की चर्चा करना, उसका अनुभव करना, और दूसरा है इस प्राकृत जगत के विषयों का अनुभव करना। ये जो दूसरा पथ है, वास्तव में यह बिल्कुल अज्ञान अविद्या का मार्ग है, और जो भगवान के अनुभव का पथ है वह जीव का स्वरूप है, स्वाभाविक ज्ञान से परिपूर्ण है। कुछ लोगों की ये मान्यता है और शास्त्र भी इस बात को कहता है, उचित तरीके से शास्त्र के नियमों के अनुसार इस संसार के भोग को भोगना यह भी पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष तो चौथा पुरुषार्थ है, उसके पहले तीन पुरुषार्थ बताए गए, सुनने में भी स्वाभाविक लगता है, इस संसार में सुख से रहना, इंद्रियों के भोगों को उचित तरीके से देना, और इसके साथ ही साथ भगवान का स्मरण करना, भक्ति करना और अंत में मुक्ति प्राप्त करना, यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। परंतु भोगों का ऐसा स्वरूप है, वे आत्मा के सहज ज्ञान को ढक देते हैं। कितना भी उचित वेद विधि से व्यक्ति यहां भोग करे, भोग हमेशा आत्मा के लिए हानिकारक है, हमेशा कभी लाभ नहीं देते। तो जब भोगों की असारता का निरूपण हो, समझ में आए कि ये व्यर्थ हैं भोग संसार के, तो वह व्यक्ति वेद की प्रारंभिक शिक्षाओं से विपरीत बोलता है, इसको निर्वेद कहते हैं, वेद से हट करके बात। निर्वेद का अर्थ वेद से विरुद्ध नहीं हुआ, लेकिन निर्वेद का अर्थ है वेद से हमारा संग नहीं है, हम नहीं मानते। नहीं मानना दूसरी बात है और विरोध करना दूसरी बात है। निर्वेद का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वे लोग वेद छोड़ करके चलना चालू करते हैं। वेद का जो उत्तर भाग है वो यही सिखाता है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो, यही वेद का सार है जिसको वेदांत कहते हैं। लेकिन पूर्व मीमांसा वेद का जो अंश है वो यही शिक्षा देता है कि ठीक से सांसारिक कर्तव्यों का पालन करो और जो तुम्हारे लिए स्वाभाविक है ऐसा भोग भोगो, ठीक से खाओ पहनो, घर का निर्माण करो, स्वजनों से संबंध रखो, स्त्री संगादि करो और इस प्रकार धीरे धीरे भवसागर के पार हो जाओ। परंतु सभी शास्त्रों में इस बात को बताया गया कि भोग का जो मार्ग है ये मनुष्य को गिरा ही देता है, बहुत कम लोग इसे भोग करके और सफलता के सोपान पर चढ़ते हैं। जैसे देवहूति, देवहूति ने बहुत काल तक और बहुत उत्कृष्ट कोटि का भोग भोगा, पांचों ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय हैं पूर्णतः उसने भोगा, परंतु वो अपना निर्णय क्या दी आप लोगों ने कल सुना कि मैं मारी गई। हमारे सारे कर्मों का यदि फल भगवान तीर्थपाद की सेवा नहीं हुई, यदि भगवान में मन अभिनिविष्ट नहीं हुआ, इंद्रियां भगवान में नहीं लगी, तो ऐसा व्यक्ति सांस लेता हुआ भी मरा हुआ है। वैसे ही मैं हूं। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह कह रही है कि सारा साधन होते हुए भी मैंने भगवान की भक्ति नहीं की। ऐसा पति जो विमुक्ति दे सकता है, वैकुंठ में पार्षदत्व प्रदान कर सकता है, ऐसे पति को पा करके मैं उसे केवल भोग चाहिए, मेरे जैसे अभागनी स्त्री संसार में कोई नहीं। इस पर करदम जी यहां सांत्वना दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मवाद शब्द है, मायावाद शब्द है, वैसे निर्वेदवाद भोगों की असारता को ही गाना, भगवान की भक्ति की ही महिमा को स्वीकार करना, लोक धर्म या वेद धर्म जिसको कहते हैं इन सबको तिलांजलि देना, इसको निर्वेद कहते हैं। इस प्रकार से जब वैराग्य की बात कर रही थी देवहूति, उनकी असारता, भोगों की असारता का वर्णन और भगवान की भक्ति की महिमा का निरूपण कर रही थी और भक्ति से शून्य होने के कारण वो अपने को धिक्कार रही थी, देवहूति मनु महाराज की पुत्री है, बहुत बड़े वैष्णव, पिता भी परम वैष्णव मिले, पति भी परम वैष्णव, फिर भी भोगों में ही अभिनिवेश रहा, इस बात का बहुत बड़ा खेद। ऐसी अपनी पत्नी से करदम जी बोले, उस समय वे भगवान विष्णु के द्वारा कहे हुए वचन को याद कर रहे थे। जिस समय करदम जी की तपस्या पूर्ण हुई थी और भगवान ने दर्शन दिया था, उसी समय भगवान ने उनसे कहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और मां को सांख्य योग का उपदेश करूंगा। तो वो बातें भगवान की याद आ गई। भगवान कभी असत्य नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो भगवान के उन सत्य वचनों का स्मरण करके कर्दम जी ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहा। मैत्रेय जी देवहूति को यहां शालिनी कह रहे हैं। शालिनी का अर्थ है प्रशंसनीय। देवहूति प्रशंसा के योग्य है। संपूर्ण मानव इतिहास में या सृष्टि में इस प्रकार की स्त्री बहुत दुर्लभ हुई है, जैसे देवहूति। भगवान ने उपदेश दिया है देवहूति को, तो श्रीमद् भागवतम में कलेवर की दृष्टि से यह दूसरे नंबर का उपदेश है भगवान के द्वारा। पहला है, पहला मतलब कलेवर की दृष्टि से जो भगवान ने उपदेश दिया है उद्धव जी को, वो बहुत अध्यायों में है वो, और उसके बाद है देवहूति को दिया गया उपदेश। तो देवहूति को शालिनी कहा जाता है, सुंदर स्वभाव वाली, प्रशंसा के योग्य। ये मैत्रेय जी विदुर जिसे कह रहे हैं शालिनी। तो ऐसी श्लाघ्या, प्रशंसनीय अपनी पत्नी से कर्दम जी इस प्रकार बोले। ऋषि रुवाच, मा खिदो राजपुत्री थम आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्तेक्षरो गर्भम अधुरात्सम प्रपत्स्यते। कर्दम जी कहते हैं, हे राजपुत्री, हे राजकुमारी, अर्थात सम्राट मनु की पुत्री, और हे अनिंदिते, हे निष्पापे, आत्मानं प्रति इथं मा खिद, खेदं मा कार्षि, अपने विषय में तुम इस तरह से खेद मत करो कि अहम भाग्यहीना इति, मैं भाग्यहीना हूं, मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया है, इसीलिए भगवान में मेरी मति नहीं लगी, भोगों में ही मति रह गई। इस प्रकार से तुम अपने प्रति खेद मत करो, चिंता मत करो, तुम परम भाग्यवती नारी हो। क्या तुम्हारा भाग्य है कि भगवान स्तेक्षरो गर्भम अधुरात संप्रपत्स्यते, अविनाशी भगवान हरि तुम्हारे गर्भ में आएंगे तुम्हारा पुत्र बनकर। जब देवहूति इस बात के लिए शोक कर रहे थे कि हमें कोई पुत्र नहीं है, हमें ब्रह्मवेत्ता पुत्र चाहिए, भक्त पुत्र चाहिए, इस प्रार्थना का उत्तर देते हुए कर्दम जी कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान बनेगा। अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी। क्षर का संस्कृत में एक अर्थ होता है जो भ्रम में पड़ जाए, कुछ को कुछ समझ ले, उसको क्षर कहते हैं। भोजपुरी में एक शब्द है क्षरा जाना, चेतना विदूषित हो जाना। इन भगवान का जो ज्ञान है वह अक्षय है, कभी क्षीण नहीं होता है। भगवान का जो कुछ भी है, उनका श्री विग्रह, उनकी स्मृति शक्ति, उनका धाम, उनका पोशाक, कोई भी परफार्ना लिया, सब सब दिव्य है, नित्य नूतन रहता है और नष्ट नहीं होता है। तो भगवान का एक नाम ही है अक्षर, अक्षर। तो ऐसे अक्षर भगवान जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, अधुरात ते गर्भम संप्रपत्स्यते, शीघ्र ही, अधुरात देर से नहीं, शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में आएंगे, तुम्हारा पुत्र बनेंगे। तो देवहूति शोक कर रही थी कि हमारे जीवन में हमने कुछ भी भक्ति नहीं किया, केवल भोगों में रची पची रही। कर्दम जी कह रहे हैं कि जिनकी भक्ति लोग करते हैं, जिनका नाम जप करते हैं, जो इतने दुर्लभ हैं प्रभु, वो स्वयं ही तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे, जबकि तुमने प्रार्थना भी नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे गर्भ में वे आएंगे। ऐसा कर्दम जी ने कहा होगा कि भगवान ने हमसे कहा है, भगवान के वचन तो असत्य हो नहीं सकते, तो भगवान ने कहा है। यह बात यहां नहीं लिखी गई है, करदम जी ने यह कहा देवहूति से कि भगवान ने कहा है, लेकिन अधूरात शब्द इस बात को सिद्ध कर रहा है कि वे आएंगे, उन्होंने कहा है तुम्हारा पुत्र बनेंगे। किसी भी व्यक्ति को अपने विषय में या दूसरे के विषय में तब खेद करना चाहिए, शोक करना चाहिए, जब उसका जीवन भगवान कृष्ण से संबंधित न हो, कृष्ण की भक्ति न हो, तो वास्तव में वो शोक करने योग्य व्यक्ति है। लेकिन देवहूति शोक करने योग्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि देवहूति एक भक्त स्त्री थी। कोई आवश्यक नहीं है, कोई भक्त है तो भोगों को नहीं भोग सकता है। वास्तव में भगवान ने जो ये भोग बनाए हैं दुनिया में, यह भोगने के लिए ही बनाए हैं, और बिना भोगे कोई रहता नहीं है। भक्त लोग भी तो खाते ही हैं ना, जिह्वा का भोग, रसनेन्द्रिय का भोग भोगते रहते हैं, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, तो खाते ही रहते हैं। बिना भोग के कौन रहेगा? कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सोते हैं, ये सब भोग हैं। तो देवहूति ने धर्म के अनुसार, वास्तव में ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार वह भोग भोग रही थी इंद्रियों के, इसलिए गलत नहीं थी। यही कारण है कि करदम जी कहते हैं अनिंदिते, तुमने कोई ऐसा गलत कार्य सपने में भी नहीं किया है जिसके कारण तुम्हें निंदित कहा जाए। अनिंदित, निष्कलंक, धवल, उज्जवल जीवन है तुम्हारा, तुम क्यों शोक कर रही हो? और तुम्हारा जीवन कितना शुद्ध है, इसका यही प्रमाण है कि भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे। इसलिए आत्मानं प्रति मा खेदः, अपने प्रति शोक मत करो। धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च, तपो द्रविण दानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। धृतव्रतासि, तुमने अपने जीवन में व्रत धारण किया है, व्रतों का पालन किया है तुमने। जो वेद शास्त्र में किसी पतिव्रता स्त्री के लिए, पत्नी के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसका तुमने भली भांति निर्वाह किया है। धृत व्रता असि, तुमने व्रत का पालन किया है। अब भगवान तुम्हारा मंगल करें। भद्रम ते, जो व्यक्ति हमेशा से अच्छा रहा है, शुभ कर्म किया है, तो ईश्वर की कृपा से आगे भी उसे शुभ गति ही प्राप्त होती है। भद्रम ते, पति अपनी पत्नी को आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें भक्ति दे, जो तुम चाहती हो तुम्हारा मनोरथ पूरा हो। तुम अब ऐसा करो कि दमेन नियमेन च तपो द्रुण दानश्च श्रद्धया ईश्वरम भज। अब ईश्वरम भज, तुम भगवान विष्णु का भजन करो, उनकी भक्ति करो, अपने इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाओ। ईश्वरम भज, ये तात्पर्य है भज सेवायाम, अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करो, जैसे वाणी से भगवान का गुणगान करो, स्तुति करो, जप करो, आंख से भगवान के श्री विग्रह को देखो, हाथ से श्रृंगार करो, इस तरह से नासिका से भगवत प्रसाद तुलसी की गंध सूंघो, पुष्प सूंघो, हाथ से विविध प्रकार की सेवा करो, ये भजन का ही अर्थ हुआ। श्रद्धा, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करो, प्रेम के साथ करो। और क्या क्या नियम बता रहे हैं? दमेना नियमेना च, दम के साथ, नियम के साथ। दम का अर्थ होता है इंद्रिय संयम, सम का अर्थ है कंप्लीट, और यम का अर्थ होता है कंट्रोल। पूर्णतः इंद्रिय पर कंट्रोल करके भगवान का भजन करो। भगवत भक्ति में इंद्रिय नियंत्रण बहुत आवश्यक है। मनमाना खा करके पी करके सुन करके बोल करके भक्ति कोई नहीं कर सकता है। क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं सुनना है, क्या क्या नहीं करना है काम, इसको जानना बहुत जरूरी है। और इंद्रियों को भगवत संबंध शून्य पदार्थों में रूप रस गंध आदि में नहीं लगाना। यदि इंद्रियों की आदत होती है, भागवत में लिखा गया है जैसे बिगड़े हुए घोड़े होते हैं तो वो सतपथ पर नहीं चलते, ठीक रोड पर नहीं चलते हैं, कभी कभी इधर उधर रथ को लेकर के चलते हैं, तो जो रथी होता है वो धोखा खा जाता है। तो मान लीजिए सारथी भी बिगड़ चुका है और घोड़े भी बिगड़ चुके हैं तो ले जाकर खाई में गिरा देंगे। इंद्रियां जो हैं ये देह रथ का निर्वाहक हैं, ढोने वाली हैं। इंद्रियों की जो मांग होती है उसके अनुसार ही शरीर इधर से उधर जाता है, और सारथी है मन। मन इंद्रियों को, घोड़ों को अपने वश में रखता है, जैसे सारथी लगाम के द्वारा घोड़ों को अपने वश में रखता है। भगवत भक्ति में हमेशा ये बात बताई जाती है, दमा, इंद्रियों का संयम। इंद्रियों को जब उनके बाह्य विषयों से हटा करके भगवान में लगाया जाता है तो वे आराम से लग सकती हैं, लेकिन जब इंद्रियां बाहरी विषयों में लगी हुई हैं तो क्या व्यक्ति लगा पाएगा मन को भगवान के चरण कमल में। मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में बैठा है और जब न तब जैसे तैसे बस टीवी देख रहा है, तो उसकी आंख जब इंगेज्ड है टेलीविजन देखने में, वो सब दूषित या कोई भी दृश्य देखने में, वो कैसे भगवान के श्री विग्रह पर देखेगा, उससे अच्छा नहीं लगेगा। विषयों को भोगते भोगते इंद्रियों की सहज प्रवणता हो जाती है सांसारिक विषयों में, इसीलिए पहला नियम बताया जाता है दमेना, बोले इंद्रियों पर कंट्रोल करो। इंद्रियों के जो अर्ज हैं, मांग है, वो हमेशा नहीं रहती है, कभी कभी होती है। कभी कभी व्यक्ति के मन में बहुत बहुत विषयों को भोगने का उन्माद होता है, किसी भी इंद्रिय के विषय, जैसे मान लीजिए आंख है तो आंखों में हमेशा ही रूप देखने की बात नहीं आती है। जब आदमी सोता है तो सो जाता है रात्रि के समय, सोते समय आंखों की वृत्ति बंद हो जाती है, सुनने की वृत्ति बंद हो जाती है। ऐसे भी कई अवसर आते हैं, यदि कुछ आदमी खा ले भारी तो कितना भी अच्छा चीज देख रहा है सुन रहा है उसको नींद आएगी। इसका अर्थ है कि इंद्रियों की जो वृत्ति है, इंद्रियों का जो कार्य है, वो हमेशा जागृत नहीं होता है। इंद्रियों का अर्ज, उनकी मांगे हमेशा जागृत नहीं रहती, कभी कभी बहुत मांगे बढ़ जाती, तृष्णा बढ़ जाती, उस समय व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। उस समय अपने को बचा लिया तो बच जाएगा। हमारे गांव में एक कहावत कहते हैं, आंधी आवे बैठ गंवावे। जब आंधी आवे, जोर की हवा आवे, तो कहीं बैठ करके समय बिता लेना चाहिए, थोड़ी देर में आंधी बीत जाती है। इसी तरह से व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, लोभ की कभी कभी प्रचंड लहर आती है, उस समय अपने को बचा लिया तो बच गया, इसके बाद तो मन शांत होता है। जो क्रोध आवे तो उस समय क्या नियंत्रण करना चाहिए, किसी भी उपाय से जैसे तैसे बोलना नहीं चाहिए। यदि नहीं बोला तो क्रोध कुछ ही क्षण में शांत हो जाएगा, और लगातार अगर यह अभ्यास करे व्यक्ति क्रोध आने पर न बोले तो एक दिन क्रोध मर जाएगा। क्रोध का बल है परुष वचन, कठोर वचन। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर उनको क्रोध के समय बोलने न दिया जाए तो लगता है मर जाएंगे, और कुछ गाली दे करके ही उनका जी हल्का होता है इस तरह से। लेकिन जी हल्का नहीं होता है, क्रोध में तो बोल देते हैं और जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका जूता इनके कपार पर आ जाता है, होता है ना, या लाठी आ जाता है कपार, यही परिणाम होता है। क्रोध आने पर आदमी शांत हो जाए तो विपक्ष भी शांत रहेगा, ये भी शांत रहेगा, क्रोध का बल कम हो जाएगा। इसी तरह काम का वेग आता है। श्री प्ररूप गोस्वामी जी कहते हैं, क्या है पहले, उदरोपस्थ वेगम वाचो वेगम, वाणी के वेग को रोक लेना चाहिए। बोलने की इच्छा होती है, मैं बोल करके रहूंगा बोल करके रहूंगा। खास करके हमने देखा है स्त्रियों में, वो बोलती हैं बोलती हैं, झगड़ा करती हैं तो वे सोचती हैं कि जो पहले बंद कर दे वो डिफीट हो गई, उसका हार हो गया। पहले बंद कर दिया तो मान लेते ठीक है वो चुप हो गई, मेरी जीत हो गई। उनमें देखा जाता है ऐसे कंपटीशन झगड़ा में कि पहले बंद करती ही नहीं है, सोने का समय आ जाता है 9-10-11 बज जाता है लेकिन फिर भी भन 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 वो शब्द वेधी बाण चलाती रहती। वो है अपने घर में, वो है अपने घर में, लेकिन शब्द वेधी बाण चलता है। ये सब वाच्य वेगम है, तो दम का अर्थ नहीं बोलना, अथवा भगवान के नाम जोर जोर से बोलना चाहिए, इससे भी सारे दोष नष्ट हो जाते। बोलना चाहिए, क्रोध आवे तो जोर जोर से भगवान का नाम बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कर्दम जी दम सिखा रहे हैं, तुम इंद्रियों पर नियंत्रण करो, और नियम, नियम का अर्थ है स्वधर्म का आचरण करो, यम दम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, नहीं करने लायक काम को नहीं करना, और नियम का अर्थ है करने लायक काम को जरूर करना, इसको स्वधर्म का आचरण कहते हैं। जैसे जप करना है तो करना है, नियम का पालन करना चाहिए, यह नहीं कि जप कर रहे हैं और माला भी पूरी भी नहीं हुई और उसमें हजारों बात बोलते जा रहे हैं, यह नियम पालन नहीं। ये सुमेरु आ जाएगा, माला पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कुछ बात बोल करके फिर चालू करना चाहिए, बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। बीच में बोलने का मतलब है हम भगवान के नाम का अपमान कर रहे हैं, उस हरि नाम से भी ज्यादा आवश्यक समझ करके, जरूरी समझ करके कोई बात बोलते हैं, यह पाप है वास्तव में भक्तों के द्वारा, भगवान के नाम का अपराध। कभी कभी लोग पूछा करते हैं समाज में, कुछ लोग तो इतने दिन से जप कर रहे हैं फिर भी उनका मन भगवान में नहीं लगा है, क्या बात, यही सब बात, भगवान नाम का अपराध होता रहता है, घोर अपराध होता रहता है। कोई जप कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम, अरे तुम कहां से आया इधर, इतना जरूरी हो गया यह मंत्र बोल रहे हैं, भगवान के नाम का अपमान हुआ ना। एक व्यक्ति को मैं देखा था हमेशा सीताराम 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 कहा करता था और नौकरों को गाली देता था बीच में खूब, सीताराम 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 ऐसे हमेशा। यह तो अच्छा है लेकिन बीच बीच में अपशब्द बोलना है या दूसरा संसारिक शब्द किसी तरह का बोलना है, इसको नियम नहीं कहते। नियम का अर्थ है जो काम करना है तो करना है, अभ्यास इसको कहते। तो तुम नियमों का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो, और तपो द्रविण दानश्च, तपस्या करो, और धन का दान करो, द्रविण दान, द्रविण का अर्थ है धन, दान का अर्थ देना, तो धन दान दो, दूसरे का उपकार करो, विशेष करके धन देने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वहां अपार धन भरा पड़ा है देवती के घर में, उस विमान में सब तो रत्नों का ही है, और जो सोने की मुद्राएं वहां रखी होंगी कितना अपार राशि, इसका दान करो, ब्राह्मणों को साधुओं को दो और भगवान के प्रचार में लगाओ। ये है दान। जब तक व्यक्ति अपने संग्रहित धन की ममता नहीं छोड़ेगा तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। अयोध्या में एक साधु थे, कहते थे कि तन से सेवा सब करे, धन से करे न कोई, जो धन से सेवा करे सच्चो सेवक सोए। डोनेशन लेने के चक्कर में कहा करते थे, तन से तो सभी सेवा कर देते हैं, शरीर से, धन से बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो धन से सेवा करे वही सच्चा सेवा करे। और वास्तव में शरीर से सेवा करना तो शरीर से है ही, लेकिन पैसा से सेवा करना वो प्राण से सेवा करना है, क्योंकि धन को बहिः प्राण कहा गया, बाहरी प्राण। ये रुपया पैसा है तो बाहरी प्राण है, इसका मतलब है प्राण के समान प्रिय है। और दूसरा अर्थ यह भी है कि इस बहिः प्राण के बिना आदमी जी ही नहीं सकता है। दो प्राण से जी रहा है, एक तो हवा सांस लेकर के जी रहे हैं, और व्यवहार में जो जी रहे हैं, कहीं सवारी पकड़ कर जाना, कोई चीज खरीदना, खाना, कपड़ा लत्ता सब, ये बाहरी प्राण से करते हैं। तो ये केवल सांस भर चले भीतरी प्राण, और पॉकेट में पैसा न हो तो आदमी मरा हुआ है, वास्तव में उसका जीवन निर्वाह होना कठिन होगा, इसलिए इसको बाहरी प्राण कहा गया, बहिः प्राण। तो जो धन दान करते हैं वो वास्तव में प्राण दान कर रहे हैं, वे वो प्राण दे रहे हैं। तो तुम्हें धन का दान करो। कोई ये कह सकता है कि देवहूति को तो बहुत था इसलिए उसको धन देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, जितना है उसी में से दान करना चाहिए, अन्यथा अपनी इच्छा के अनुसार किसको धन हुआ। अब किसी से भी लास्ट में पूछिए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई, जितना धन चाहिए था उतना मिल गया, तो कहेगा नहीं अभी कुछ चाहिए। किसी भी धनी से, किसी धनी व्यक्ति से पूछा जाए तो वो कहेगा नहीं नहीं हमारी इच्छा पूरी नहीं, हाय हाय करते हुए ही सब मरते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कोई नहीं मरता है कि हे भगवान हमको बहुत दिया, धन्यवाद धन्यवाद, कोई नहीं, हाय बाद में सब रहते, हाय हाय करते हुए मरते। तो धन का दान करो, शिक्षा दे रहे। धन की आसक्ति भी बहुत बड़ा बंधन है। कुछ लोग अपने धन को केवल बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ी हुई राशि को केवल छोड़कर मरने के लिए और कुछ नहीं करते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं, और बाद में सरकार ले लेती है अथवा कोई न कोई उनको मार करके ले लेता है, उनका चेला या कोई न कोई मार कर ले लेता है। वृंदावन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, साधु मरते हैं तो पाया गया कि किसी के बेड के नीचे 3.5 लाख रुपया, और वो भीख मांगता था। भीख मांग करके खाता था, बहुत दीन लाचार रूप में, और जब मर गया बिजली के करंट से मर गया तो उसके बेड के नीचे 3.5 लाख रुपये मेरा ही शिष्य पकड़ा। तो अद्भुत बात है, हिरण्यकश्यपु था, हिरण्यकश्यपु का भी अर्थ है जो सोना पर सोवे, और हिरण्याक्ष उसका भाई था जो दुनिया भर के सोना को सोना पर आंख रखे, अक्ष रखे, मतलब ये इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, ये करना है, ये करना है। और हिरण्यकश्यपु भोगता था, सोने पर ही सोता था, कश्यपु का अर्थ वेद। एक भाई कमाने वाला, दूसरा भोगने वाला, बस यही। धन केवल भोगने के लिए नहीं है, इकट्ठा किया जा सकता है लेकिन देने के लिए, दूसरे को उपकार के लिए, गरीबों को देना चाहिए, उपकार करना चाहिए। करदम जी सिखा रहे अपनी पत्नी को, और श्रद्धया च ईश्वरम भजे, श्रद्धा के साथ, परम विश्वास के साथ भजन करो। स त्वया राधित शुक्लो वितन्वन् माम कम यशः, छेता ते हृदय ग्रंथिम औदर्जो ब्रह्म भावनः। इस प्रकार से जब तुम उपासना करोगी, भक्ति करोगी भगवान की, तो वे भगवान शुक्ल औदर जो तुम्हारे उदर में आएंगे, तुम्हारा पुत्र बनेंगे, और मानकम जसह वितन्वन, मेरे जस का विस्तार करेंगे, मुझे अपने पिता श्री होने का सौभाग्य देंगे, ब्रह्म भावना और ब्रह्म का उपदेश करेंगे। ब्रह्म भावयति उपदिशति इति ब्रह्म भावना, ब्रह्म का उपदेश करेंगे। ठीक माया की बातों से भिन्न भगवान का वर्णन करेंगे, जीव का वर्णन करेंगे, और किस तरह से जीव अपने स्वरूप में अवस्थित होगा इसका वर्णन करेंगे, और उस ज्ञान द्वारा तुम्हारे हृदय ग्रंथि का छेदन करेंगे। छेता, छेता का अर्थ है छेत्स्यति, छेदन करेंगे। कर्दम जी अपनी पत्नी को आश्वासन दे रहे हैं कि जब तुम इस प्रकार भगवान की आराधना करोगी, पूजा करोगी, तो भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लेंगे और मेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे, तथा ब्रह्म का उपदेश करके, भक्ति की बात बता करके तुम्हारे हृदय ग्रंथि का छेदन करेंगे। ये हृदय ग्रंथि क्या है, इस बात पर बारंबार विचार करना चाहिए गहराई से। हृदय ग्रंथि क्या है? ग्रंथि का अर्थ तो सभी जानते हैं, गांठ, ग्रंथि। जैसे रस्सी से हम लोग ग्रंथि बनाते हैं, एक के बाद दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, चौथी गांठ। अगर उसको और टाइट करना हो तो गांठ बांध करके और उसमें तेल लगाना चाहिए, स्निग्ध या घी, और फिर गांठ बांधनी चाहिए, तो उस गांठ को फिर खोलना असंभव हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। जीव है चिन्मय, स्प्रिट है, भगवान का अंश है, लेकिन इस जड़ शरीर को वो मैं मानने लगता है। पहली तो है अविद्या, कि अपने स्वरूप का उसे स्मरण ही नहीं रहता है, कभी भी स्मरण नहीं था, उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या का अर्थ है स्वरूपा ज्ञानम, स्वरूप अज्ञानम, स्वरूप का ज्ञान न रहना। विस्मरण दूसरी चीज है, और टोटल शुरू से ज्ञान नहीं होना एक अलग चीज है। शास्त्र इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। यद्यपि व्यवहार में हम लोग कहते हैं जीव अपने को भूल गया, भूल गया, भूल गया, भूल नहीं गया, कभी याद नहीं किया, यह शब्द है शास्त्र का। भूलना तो तब कहा जाएगा कि वो याद रखा था अपने स्वरूप को, बाद में किसी कारण से भूल गया। ये शास्त्र ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, अविद्या। तो अपने स्वरूप का स्मरण नहीं होना और जड़ नस्वान प्राकृत देह में मय बुद्धि होना, अपने को शरीर मानना और शरीर को नित्य मानना, शरीर को ही सत्य मानना, और शरीर से संबंधित जो भी पुत्र, स्त्री, धन, घर, इज्जत जो कुछ भी है उसको मेरा मानना, इस प्रकार की भावना को हृदय ग्रंथि कहते हैं। हृदय में इस प्रकार के अविद्या, अज्ञान की ग्रंथि आ जाती है, गांठ बन जाती है, जल्दी छूटता नहीं है, 10-20 प्रवचन से भी जाने वाला नहीं, इतनी कड़ी गांठ। तो भगवान आएंगे और ब्रह्म का उपदेश करेंगे, तब तुम्हारी हृदय ग्रंथि खुल जाएगी, खत्म हो जाएगी। कभी कभी तो ऐसी गांठ बन जाती है कि खोलने से खुलती नहीं है, तब उस पर उसको तलवार से या हंसिया से या कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है। ऐसी गांठ बन जाती है, गांठ खोलना बहुत कठिन होता है। जो भगवान का उपदेश होगा, वचन, उसी को असी कहा गया, तलवार, वो काट करके फेंक देती है। जीव को ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं, और देह के संबंधी लोग या वस्तुएं हमारी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति यही अनुभव करता है जो गृहस्थ है, कि यह पत्नी मेरी है। अगर कोई उसको समझावे कि नहीं नहीं तुम देह ही नहीं हो, फिर पत्नी कैसे तुम्हारी हो सकती है? लेकिन इस ज्ञान को ग्रहण करके पचा लेना, रियलाइज करना, ये बहुत कठिन बात है। पहला तो ज्ञान ये है कि मैं देह नहीं हूं, मैं चिन्मय आत्मा हूं। पर अनादिकाल से देह को ही मैं मान रहा है जीव, और देह के सुख सुविधा को ही अपने जीवन का ध्येय मान रहा है, लक्ष्य मान रहा है, और देह से संबंधित वस्तु और लोगों को ही अपना मान रहा है। यह है हृदय ग्रंथि, बहुत बड़े अज्ञान की बात है। तो भगवान तुम्हारे गर्भ से आएंगे, औदर्ज का अर्थ है उदर संबंधी पुत्र, पुत्र बनकर आएंगे और तुम्हारे अविद्या ग्रंथि का छेदन करेंगे, हृदय ग्रंथि का छेदन करेंगे। किस तरह से भगवान कपिल ने छेदन किया हम लोग भागवत में देखते हैं। उन्होंने प्रवचन किया, मां को ज्ञान दिया, वास्तव में प्रवचन सुनने से ही अज्ञान जाता है और जीव अपने स्वरूप को समझता है, और पर में पारक देह में अभिनिवेश हो गया है उसका कि यह मैं हूं, वो छूट जाता है। ग्रंथि का अर्थ है कि दोनों तरफ से बंधन है। ग्रंथि कब लगती है, जब एक रस्सी इधर से आती है, एक रस्सी इधर से आती है, दो रस्सी मिल करके गांठ बन जाती है, इसको ग्रंथि कहते हैं। जड़ शरीर में, नाशवान शरीर में, दुखमय शरीर में आत्मबुद्धि और ये होती है, और आत्मा में, ये दोनों की जब बात होती है, आत्मा में देह बुद्धि होती है और देह में आत्मबुद्धि होती है, ये परस्पर एक दूसरे में आरोप होता है। अपना स्वरूप तो याद कर नहीं रहा है जीव, अपने को देह मान करके सोचता है मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं इतने दिन का हूं। जब से शरीर मिला है तो अपनी आयु को उतने दिन गिनता है, इतने साल का मैं हूं। यह तो उस प्रकार की मूर्खता है जैसे किसी को कपड़ा सिलाया जाए, मान लीजिए दो दिन पहले कमीज सिलाया जाए, पैंट सिलाया जाए, किसी का पैंट 10 दिन का है, ये कमीज 10 दिन का है, किसी का 50 दिन का है, किसी का 2 महीने का, और उस व्यक्ति से पूछा जाए आपकी उम्र क्या है, तो जोड़े किस दिन टेलर के पास से आया था मैं कहना 10 दिन का हूं। ये मूर्ख कहेंगे, क्या वस्त्र का परिचय तुम्हारा परिचय हो गया। भगवान गीता में कहते हैं वांसन से जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी तरह से आत्मा कर्म से जीर्ण शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर ग्रहण करता है, लेकिन जिस शरीर में जाता है उसी को अपना स्वरूप मान रहा है, अपना सारा परिचय सब कुछ देता है और सोचता रहता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। यह हृदय ग्रंथ, जो हम नहीं है उसको मैं मानते हैं और जो हम हैं उसका स्मरण ही नहीं। यह हृदय ग्रंथ, इस हृदय ग्रंथि को तोड़ने के लिए कौन समर्थ है, केवल भगवान, और दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता। भगवान जिन शब्दों का प्रयोग किए हैं उन शब्दों की यदि आवृत्ति की जाए, ज्ञानोपदेश दिया जाए, तो भगवान की कृपा से हृदय ग्रंथि टूट जाती है, खत्म हो जाती है, जीव धन्य हो जाता है। तो खास करके देवहूति का गुरु बनने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए भगवान अवतार लेंगे। अवदर्जा कार्त पुत्र, माया का उपदेश छोड़ करके ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए। ये माया का उपदेश क्या है, यहां का वर्णन करना, यहां के वस्तुओं को और लोगों की सत्यता का निरूपण करना, ये है मायावाद। और मायावाद तो वास्तव में यह है कि भगवान के रूप, भगवान के धाम नाम सबको माया का विकार समझना, वास्तव में ये मायावाद है। लेकिन माया और ब्रह्म दो चीजें हैं, तो ब्रह्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु ब्रह्म है। तो भगवान का वर्णन होना चाहिए, भगवान का जब वर्णन किया जाएगा जीव के भक्तिमय स्वरूप का, तब जीव देह में से अभिनिवेश छोड़ेगा, अपने स्वरूप को समझेगा। इस प्रकार कर्दम जी ने आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो अपने विषय में, तुम धन्य हो, महाभाग्यवती हो, भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे और तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे, तुम भगवान का भजन करो। तब मैत्रेय जी कहते हैं देवहूत्यपि संदेशम गौरवेण प्रजापतेः सम्यक श्रद्धाय पुरुषम कुटस्थम भजत गुरुम। मैत्री जी कहते हैं कि देवहूति ने भी प्रजापति के संदेश को, कर्दम जी के आदेश को, उपदेश को ग्रहण किया गौरव के साथ। गौरवेण का अर्थ है कि इस भाव से उसने ग्रहण किया कि हमारे पति देव महान पुरुष हैं, जो भी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। बड़े आदर के साथ, गौरव के साथ उसने अपने पति प्रजापति कर्दम जी के उपदेश को ग्रहण किया, जो तैयार हो गई भजन करने के लिए। उन्होंने कहा इंद्रिय संयम करो, तो उस दिन से उसने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया, किसी भी इंद्रिय के भौतिक सुख को नहीं भोगती थी, तैयार हो गई। सम्यक श्रद्धा, प्रजापति कर्दम जी के वाक्यों में सम्यक श्रद्धा करके, विश्वास करके, कुटस्थम अभजत गुरु, हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भगवान जो प्राकृत धारणाओं से बिल्कुल परे हैं, ऐसे प्रभु का भजन करने लगी। और भजन कर रही थी भगवान का, तो बार बार चिंतन कर रही थी कि भगवान मेरा गुरु बनेंगे, गुरु बनेंगे, मुझे उपदेश देंगे। ये बात उसको हमेशा याद रहती थी, इसीलिए यहां गुरुम शब्द का प्रयोग किया गया। गुरु का, कुटस्थ पुरुष का भजन करने लगी, जप वगैरह करने लगी। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार गुरु के वचनों पर विश्वास करके कृष्ण का भजन करना चाहिए। श्रद्धा बहुत आवश्यक, श्रद्धाय प्रजापति कर्दम जी के वचनों में, संदेश में सम्यक श्रद्धाय, पूर्ण श्रद्धा करके देवहूति भगवान विष्णु का भजन करने लगी, भक्ति करने लगी, जो जो उन्होंने कहा था वो सब करने लगी। तो क्या परिणाम हुआ, ये भगवान गर्भ में आए, वर्णन करते हैं। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमम वीरजमापन्नो यज्ञग्नि दिव दारुणी। इस प्रकार बहुत काल तक देवहूति ने भक्ति किया, नियमों का पालन किया, तो मधु दैत्य का नाश करने वाले भगवान हरि कर्दम जी के वीरज का आश्रय लेकर देवहूति से उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में अग्नि प्रकट होता है। भगवान सभी ऐश्वर्यों के अधिपति हैं और मधु नामक दैत्य का नाश किए थे, जो बहुत बलवान दैत्य था, और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं, माया के मालिक हैं, अधिपति हैं। माया के नियम भगवान पर कभी लागू नहीं हो सकते, फिर भी भगवान ने कर्दम जी के वीरज का आश्रय लिए और देवहूति के गर्भ में प्रवेश किए। और प्रकट हुए किस तरह, देवहूति के गर्भ से जैसे काष्ठ में अग्नि उत्पन्न होता है। तो अग्नि काष्ठ का परिणाम नहीं है, अग्नि एक अलग वस्तु ही है, काठ भिन्न है। काठ जो है वो तो पृथ्वी का विकार है, लेकिन काष्ठ में जैसे अग्नि प्रकट होता है वैसे देवहूति से भगवान प्रकट हुए। इसका अर्थ है कि वास्तव में भगवान की कोई मां नहीं है, भगवान का कोई पिता नहीं है। किसी श्रेष्ठ भक्त को भगवान अपने मां के रूप में स्वीकार करते हैं, पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना उनकी लीला है, वो बाध्य नहीं है औरों जैसा जन्म लेने के लिए। कोई ये कह सकता है कि कर्दम जी के वीरज का आश्रय लिए, हां लिए, भगवान तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। वाराह भगवान जन्म लिए ब्रह्मा जी के नाक से, नृसिंह भगवान जन्म लिए, नृसिंह भगवान प्रकट हुए हिरण्यकश्यपु के भवन के खंभे से, तो क्या पत्थर उनका पिता हो गया बताइए, नृसिंह भगवान तो पत्थर से प्रकट हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि इस बात को जान करके भी कि भगवान पत्थर से प्रकट हुए हैं, क्या मूर्ति पूजा में किसी को भी अविश्वास हो सकता है? जब खंभा में से प्रकट हो सकते हैं तो साक्षात श्री विग्रह में क्यों नहीं है। इस खंभे की पूजा नहीं कर रहा था हिरण्यकश्यपु, उस दिन भी वो अपने मुष्टिका से मारा उस खंभे पर, ऐसा लगा जैसे स्विच ऑन हो गया और भगवान प्रकट हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान खंभा से प्रकट हुए, इसके पहले कोई हो सकता था यह सोचे कि भगवान पत्थर में नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन अब इसके बाद भी कोई ऐसा सोचे कि भगवान नहीं है पत्थर में, तो वो वैसा बोका इस दुनिया में कोई नहीं। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ऐसे दुष्टों को ये बात सोचनी चाहिए, भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं मंदिर में भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान तो सब जगह है, हम में तुम में सब जगह है। तो प्रभुपाद जी कहा करते ठीक है, तुम कहते हो कि भगवान सब जगह है तो मूर्ति को छोड़ करके और सब जगह है, जब सब जगह है तो मूर्ति में भी है ना, तुम्हारे ही सिद्धांत के अनुसार मान लिया जाए। अगर भगवान सब जगह है तो मूर्ति में है, तो जो सब जगह कहते हो और पूजा कहीं नहीं करते हो भगवान की, तो उसे तो अच्छा है ना कि एक जगह उनको देख करके पूजा की जाए, तुमको तो पूजा करना नहीं है इसलिए भगवान को सब जगह फैला देते हो। वो तो है, इसमें संदेह नहीं है, वो सब जगह है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, सब जगह है, ब्रह्मांड के अंदर है, परमाणु के अंदर है, सब जगह है। लेकिन वे भाग्यशाली लोग हैं, वे महान हैं जो एक जगह ईश्वर को देख करके पूजा करते हैं। यह बहुत बड़ा साइंस है। और जो आलसी हैं, जो वास्तव में पापी हैं, वे लोग भगवान को मूर्ति तक में नहीं देख पाते हैं और जगह कहां देखेंगे। वो कहते भर केवल हैं कि भगवान सब जगह हैं, लेकिन वो कहीं नहीं देखते। जैसे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज से पूछा, जिस हरि के बल से तुम इतना निर्भय हो वो कहां रहता है, कहां रहता है? प्रहलाद महाराज ने कहा वो तो सब जगह रहते हैं, सब जगह रहते हैं। तो हिरण्यकश्यपु ही पूछा सब जगह है तो क्या इस खंभे में भी है, यहां भी है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं पश्यामि, मैं तो देख रहा हूं कि हैं और हंस रहे हैं। ऐसे वो कहे और हंस रहे थे प्रहलाद महाराज, और वो तो नक्ष सिख तक क्रोध से व्याप्त हो गया था। वो कहता है अहम न पश्यामि, मैं तो नहीं देख रहा हूं। प्रहलाद महाराज कहे देखो या मत देखो, मैं तो देख रहा हूं। और प्रणाम कर रहे थे प्रहलाद महाराज, प्रणाम कर रहे थे भगवान को डायरेक्ट देख करके। क्या देख रहे थे? परम सुंदर चतुर्भुज भगवान का सांवला रूप देख रहे थे उसमें। नृसिंह भगवान को नहीं देख रहे थे, नृसिंह और भगवान तो नृसिंह के रूप में प्रकट होंगे हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज देख रहे थे परम सुंदर, चार भुजाएं हैं, पीताम्बर पहने हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चारों हाथों में विविध आयुध धारण किए हैं, तो वे प्रणाम कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु को इतना भ्रम हुआ, वो सोचते कि लगता है सचमुच विष्णु इसमें है, नहीं तो इसका जो भाव है कि प्रणाम कर रहा है, निर्भय है, इतना निकट अनुभव कर रहा है तभी मुझसे नहीं डरता है। तो कहता तो क्या तुम्हारा प्रभु तुम्हारा हरि इसमें है? हाँ इसमें है। तो ठीक है, अगर इसमें है तो आज अंतिम बार मैं अपने हाथों से ही तुम्हारा वध करना चाहता हूं। अब तक तो मैं सेवक लगाया था, बहुत एजेंट लगाया था तुमको मारने के लिए, अपने हाथ से कभी मारना नहीं चाहा, क्योंकि नाम डूब जाता मेरा कि अपने बेटा को मारा है, लेकिन अब हद हो गया। प्रहलाद महाराज ने कुछ आलोचना कर दिया और हिरण्यकश्यपु ने कहा कि विष्णु मेरा शत्रु है, ये है वो है, मेरे भाई को मारा, ऐसा किया, असुरों को मारने पर पड़ा रहता है, वो कभी मेरा मित्र नहीं हो सकता है, मेरा शत्रु है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा जहिया सुरम भाव मिमम तुम आत्मना, इस आसुर भाव को छोड़ो, भगवान सबके मित्र हैं, सुहृद हैं, ऐसा अनुभव क्यों नहीं करते हो? शत्रु हैं तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे देह में ही रहती हैं, उनको बस में नहीं किए हो, चारों तरफ दिशा विदिशा जीत लिए हो, सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा शत्रु विजेता हूं, लेकिन तुम्हारे देह के भीतर ही इंद्रियां रह रही हैं, उसको तुम नहीं जीते हो, वो शत्रु हैं, भगवान विष्णु शत्रु नहीं है। और ऐसा गलत वाक्य कभी मत बोलना। प्रहलाद महाराज ने जब ऐसा कहा तब तो तिल मिला गया, बाप रे बाप, बेटा होकर बाप को सिखा रहा है और इस तरह से इस तरह से कांपने लगा क्रोध से। तो वो कहा कि ठीक है, आज मैं देख रहा हूं तुम्हारे हरि का बल, अगर तुमको बचा लेगा तो मैं लोहा मार लूंगा, अभी मैं तुम्हारा वध कर रहा हूं। जिन्हें ही मारने जा रहा था तेवही भगवान प्रकट होकर के उसको चीड़कर खत्म कर दिए। तो भगवान तो पत्थर में है, काष्ठ में है, सब जगह भगवान है। जगन्नाथ जी काष्ठ में है, दारू ब्रह्म, वास्तव में भगवान की उपस्थिति से वो काष्ठ ही पूरा ब्रह्म हो जाता है। जैसे लोहा हो और उसमें यदि अग्नि का संचार किया जाए तो लोहा लोहा नहीं रह जाता है, वो आग हो जाता है पूरा। भगवान प्रविष्ट होते हैं प्राकृत वस्तु में भी तो प्राकृत वस्तु चिन्मय हो जाती है। मूर्ति वास्तव में भगवान का स्वरूप है, ऐसा नहीं कह सकते मूर्ति में भगवान है, मूर्ति ही भगवान है, यह साइंस है। भगवान हमारी पूजा को, हमारे प्रणाम को, हमारे उपहार को स्वीकार करने के लिए प्रकट होते हैं, यह सत्य, इसको कहते हैं विश्वास, श्रद्धा। तो कर्दम जी के वीर्य में यदि भगवान आए तो क्या आश्चर्य हो गया, जब ब्रह्मा जी के नाक से जन्म ले सकते हैं, हिरण्यकश्यपु के घर के खंभे से प्रकट हो सकते हैं, तो किसी श्रेष्ठ भक्त के वीर्य पर भी आ जाए फिर भी वो भगवान ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जीव जैसा पराधीन हो गए और उनके देह का निर्माण हो गया, वो फिर भी वीर्य से अलग हैं। अन्य जीवों का जो शरीर बनता है तो वीर्य ही रूपांतरित होता है वास्तव में देह के रूप में, वीर्य का परिणाम है देह, लेकिन भगवान का जो देह है स्वरूप है वो कर्दम जी के वीर्य का परिणाम नहीं है, ये वीर्य पर बैठे हैं दूसरी बात है। तो भगवान कहीं भी किसी भी भक्त के यहां प्रकट हो सकते हैं, चाहे उसे वीर्य का आश्रय लें चाहे कुछ भी। और वीर्य का एक यहां अर्थ है भक्ति प्रभाव। देवहूति और कर्दम जी के भक्ति के प्रभाव से भगवान उसके पुत्र बने, वास्तविक अर्थ ये है। वीर्य का अर्थ हमेशा सेमन नहीं होते, वीर्य का अर्थ होता है प्रभाव, तेज, वीरता। तो भक्ति में वह बल है कि भगवान पुत्र बनते हैं, और पुत्र बनने में यदि भगवान अपने भक्त के वीर्य का आश्रय लें तो यह भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान वात्सल्य सुख लेने के लिए इस तरह से लीला करते हैं, तो उनकी भगवत्ता जेव की तेव बनी रहती है, कभी क्षीण नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। जो लोग नहीं समझते हैं, भगवान के स्वभाव को नहीं जानते हैं, भगवान की कथा नहीं सुने हैं, सिद्धांत नहीं सुने हैं, तो तुरंत कहते हैं देखो ये तो मनुष्य की तरह भगवान भी जन्म ले रहा है। लेकिन यहां उदाहरण दिया जा रहा है, दारुणी ही अग्नि इव, किसी दारू में काष्ठ में यदि अग्नि प्रकट होता है तो वास्तव में उस काष्ठ से अग्नि बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न तत्व है वह, प्रकट उसमें होता है और उसके लिए वो आश्रित नहीं है। देखा जाता है कि जिस काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होता है उसी काष्ठ को जलाकर भस्म कर देता है। आग का गुण स्वभाव अलग है, काष्ठ का अलग है, इसी तरह भगवान का स्वरूप चिन्मय है, दिव्य है, अप्राकृत है, वो किसी प्राकृत वस्तु के अधीन नहीं होते। तो इस तरह से भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो उस समय देवता लोग बाजा बजाने लगे, अवादयंस्तदाव्यम्नि वादित्राणि घना घनः देवाइति शेष, आकाश में बाजे बजने लगे। इसका अर्थ यह है कि देवताओं के समाज में इस बात का पूरा पूरा ज्ञान है कि भगवान जन्म ले रहे हैं, और इधर मनुष्यों का समाज, बुद्धू समाज क्या कहता है, आदमी जन्म लिया है, आदमी जन्म लिया। कभी कभी तो कहते हैं कृष्ण भी तो हम ही लोग जैसे जन्म लिए, थोड़ा तेज हो गए, तेजस्वी हो गए, इसीलिए उनको लोगों ने भगवान कहना चालू किया। ये मनुष्यों का ज्ञान है, इतने कम बुद्धि के हैं। वास्तविक ज्ञान देवताओं को है। देवताओं का समाज इस बात को जान गया कि भगवान जन्म ले रहे हैं, तो आकाश में वे लोग विविध प्रकार के बाजे लेकर के उपस्थित हो गए, बाजे बजने लगे भगवान के जन्मोत्सव में, खुशियां छा गई। जो लोग महान पुरुष है वे भगवान के दिव्य जन्म को समझते हैं, जैसे जन्माष्टमी के अवसर पर वास्तव में जो शुद्ध लोग हैं वे भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, जानते हैं भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान का जन्मोत्सव ऐसा नहीं जैसे अन्य लोगों का बर्थ सिरेमनी हो, हमारा जन्म हो गया, हमारा जन्म हो, उसका जन्म हुआ। और कभी कभी तो जन्मोत्सव मनाते हैं, विवाहोत्सव भी हर एक साल मनाते हैं कि इसी दिन हमारा विवाह हुआ था, तो ये चलो मनाओ, जिस दिन हम बंधन में आए थे उसका उत्सव मनाया जाता है, इसी दिन हम दोनों बांधे गए थे। तो जन्म लेने का उत्सव मनाना कैसा अज्ञान है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल जाए किसी खास तिथि को, और साल भर के बाद जेल में ही वो तिथि आवे तो लगे उत्सव मनाने कि इसी दिन मैं पकड़ करके जेल आया था, मिठाई बांटो, भोजन बनाओ, ये करो करो, और हर एक साल गिनता जाए। इस देह में आए हैं हम, जड़ देह में जन्म ले, कितना दुख, कितनी सजा है, भोग है, दंड भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना बर्थडे मनाओ और जन्माष्टमी को कुछ भी मत करो, ये असुर विचार है। भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। देवता लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं भगवान कपिल देव का। उत्सव में सबसे प्रधान चीज क्या है? बाजा बजाना। किसी व्यक्ति का आनंद वास्तव में बाजा के रूप में प्रकट होता है, उत्साह छा जाता है। किसी व्यक्ति की कन्या का विवाह होता है, पुत्र का विवाह होता है, तो गरीब होते हुए भी देखा जाता है कि वो कहीं न कहीं से बाजा लाता है और उत्सव में बाजे बजाए जाते हैं। बाजा न बजाया जाए तो फीका लगता है, अमंगल होता है। तो भगवान के जन्म पर अवादयं सदा व्यमनी वादित्राणी, वादित्राण विविध बाजे, शंख, बीणा, बांसुरी और भी अनेक प्रकार के जो बाजे हैं। देवताओं के लोक में तो हजारों प्रकार के बाजे, और बजाने की कला भी देवताओं को मनुष्यों से लाखों गुना ज्यादा अच्छा मालूम है। वो केवल ढोलक ही ढब ढब नहीं पीटते हैं, बहुत कलात्मक ढंग से बजाते हैं, वो सब बजाने लगे। और घना घना, घना घना का अर्थ है कि बादल गरजने लगे। बाजा बज रहा है तो बादल भी उसी बाजा में अपना स्वर मिला करके गरजने लगे और थोड़ी थोड़ी वर्षा कर रहे थे। गायंती स्म गंधर्वा नृत्यंत अप्सरसो मुदा, और आनंद के साथ गंधर्व जन गण गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगे। अपनी आप भगवान के जन्मोत्सव में सारा ब्रह्मांड नाच रहा है। और अभी आज तक कुछ मनुष्यों को पता नहीं है कि ये भगवान है। आज तक पता नहीं, इतनी बात सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी, इतना समय बीतने के बाद भी, देवता लोग तो उसी समय सब जान गए। गंधर्व गण गाने में बहुत प्रवीण है, उनका कंठ भगवान ने स्पेशल बनाया और संगीत कला के विशारद। प्राय भगवान के उत्सव में ये लोग गाया करते हैं, तो सब समय भगवान का जस गाते हैं। भगवान की कीर्ति गाने के लिए, नाम गाने के लिए ही गंधर्व हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सातवें स्कंध में एक कथा है, नारद जी पूर्व जन्म में उपबरहण नाम के गंधर्व थे, बहुत सुंदर शरीर था उनका और बहुत सुंदर गाते थे। तो एक बार नारद जी को ऋषियों ने इनवाइट किया, यज्ञ किए थे, भगवान की कीर्ति गान का महोत्सव था, तो उसने लोग निमंत्रण दिए उपबरहण को, कि तुम आओ और यहां सुनाओ संगीत। नारद जी अपने मुख से कहते हैं कि मैं उपवरण नाम का गंधर्व था और जब ऋषियों ने मुझे बुलाया तो मैं क्या कि मैं बहुत सी अप्सराओं के साथ गया, उसमें गया तो मेरा आवेश था, मैं बहुत सुंदर था, विषयों में मेरा आवेश था, मैं महिमा नहीं समझ पाया भगवान के कीर्तन की। जब वो लोग गाने के लिए कहे तो मैं वहां जूटा और स्त्रियों के साथ सिनेमा सॉन्ग गाना चालू किया। इतना सुनते ही ऋषियों ने तुरंत मुझे साप दिया, चुप चुप शूद्र हो जाओ, शूद्र हो जाओ, देवता मत रहो, शूद्र हो जाओ। इतना अच्छा गला पा करके भी तुम थर्ड क्लास का गीत गा रहे हैं, तुरंत उन्होंने शूद्र होने का साप दिया। इसके बाद वही उपवरण गंधर्व एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया शूद्र बनकर। तो वहां साधुओं के संगति से फिर नारद जी हो गए। बाद में नारद जी ऐसे हुए। तो इस प्रकार से गति होती है। तो ऐसा लगता है कि गंधर्व गण हमेशा भगवान की कीर्ति गाने के लिए ही बनाए गए हैं, उसी में जीव की शोभा है। कोई सांसारिक वर्णन करने वाला गीत न सुनना चाहिए न गाना चाहिए, भगवत गीत गाना चाहिए। तो गंधर्व गा रहे थे और देवियां नाच रही थी, अप्सरसाएं नृत्य मुदा आनंद के साथ। पेतुः सुमनसो दिव्या खेचरैरपवर्जितः, सिद्धों के द्वारा आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। देवलोक के जो पुष्प हैं मनुष्य लोक की अपेक्षा बहुत बड़े बड़े होते हैं और ज्यादा सुगंधित होते हैं और परम सुंदर होते हैं। तो ऐसे फूल बरसाए जा रहे थे कर्दम जी के आश्रम के। पेतु सुमन सो दिव्या, दिव्या का अर्थ स्वर्गीय फूल बरसाए जा रहे थे। प्रसेदुश्च दिशा सर्वा अम्भांसी च मनांसी च, और सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई, जल सब शुद्ध हो गए और लोगों के मन बिल्कुल प्रसन्न हो गए। अपने आप भगवान के प्राकट्य के कारण जीवों के मन प्रसन्न हो गए अपने आप और जल शुद्ध हो गए। प्रकृति इस तरह से सज करके तैयार हो जाती है भगवान के अगवानी के लिए। जल शुद्ध हो गए इसका अर्थ है कि पहले से जल कुछ गंदे थे तो भगवान के आविर्भूत होने से बिल्कुल शुद्ध हो गए। शुद्ध करना नहीं पड़ा, भगवान के आविर्भाव से ही वे शुद्ध हो गए और सुस्वादु बन गए। तत्कर्दम आश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू साकम ऋषिभिर मरीच्यादिभिर। जानते थे कि भगवान हैं, ये भगवान प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी अपने मरीचि आदि पुत्रों के साथ ऋषियों के साथ वहां आए। मरीच्यादि भी ऋषि भी साकम, मरीचि आदि ऋषियों के साथ। ब्रह्मा जी के चार पुत्र पहले हुए थे, सनत कुमार और सनातन, ये चार पुत्र हैं उनके, सबसे पहले हुए थे। नहीं, सबसे पहले रुद्र जन्म लिए थे, उसके बाद ये चार पुत्र। तो चार पुत्रों के बाद सबसे पहला जो पुत्र हुआ ब्रह्मा जी का वो थे मरीचि। इतना तेजस्वी थे कि उनका नाम ही मरीचि रख दिया। मरीचि का अर्थ होता है किरण, प्रकाश, बहुत तेजस्वी थे। तो मरीचि जिनमें आदि हैं, ऐसे ऋषि जनों के साथ ब्रह्मा जी आए कर्दम जी के आश्रम पर। देखिए भगवान की भक्ति की महिमा, जब भगवान आ गए भक्ति के वश में होकर के तो ब्रह्मा जी अपने आप आ रहे हैं उस आश्रम पर। नहीं तो ब्रह्मा शिव आदि की आराधना करनी पड़ती है, इनको दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए, दर्शन भी नहीं देते हैं जल्दी, और वो कर्दम जी के आश्रम पर अपने आप आए। कर्दम जी का आश्रम कैसा है? सरस्वत्या परिश्रितम, सरस्वती नदी के द्वारा आवेष्टित है, चारों तरफ सरस्वती नदी बहती है। भगवंतम परम ब्रह्म सत्वे नांसे न शत्रुहन, तत्व संख्यान विज्ञप्ते जातम विद्वान अजह स्वराट, सभाजयन विशुद्धे न चेतसा तत्चिकीर्षितम, प्रहिष्यमाणे रसभि कर्दम चेदम अभ्यधात। श्री ब्रह्मा जी जान गए कि ये साक्षात भगवान है, परब्रह्म है और अपने अंशों के साथ प्रकट हुए हैं, अपने अंश के साथ प्रकट हुए हैं। हे शत्रु, हम हे शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी, विदुर जी बाहरी शत्रुओं को भी जीतने में समर्थ थे और भीतर के काम क्रोध लोभ आदि को भी जीत चुके थे, इसलिए मैत्रेय जी उनको कहते हैं शत्रुहन, शत्रु का हनन करने वाले। किसी मनुष्य के दो तरह के शत्रु हैं, एक बाह्य शत्रु और अंतः शत्रु। अंतः शत्रु को जो जीत जाता है वही वास्तविक विजेता है। विदुर जी ऐसे पुरुष हैं जो माया को जीत चुके हैं भगवान की कृपा से। मैत्रेय जी कहते हैं ब्रह्मा जी जान गए कि भगवान अवतार लिए हैं, साक्षात परब्रह्म अवतार लिए हैं। किस लिए? तत्व संख्यान विज्ञप्ति, तत्वों की व्याख्या जिसमें है उस सांख्य शास्त्र का विशेष विज्ञापन करने के लिए, प्रचार करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं। इस बात के विद्वान जानकार थे ब्रह्मा जी, क्योंकि अजह स्वराट वे अजन्मा है, डायरेक्ट भगवान से उनका जन्म हुआ है और उनका जो ज्ञान है स्वतः सिद्ध ज्ञान है, अर्थात डायरेक्ट भगवान से मिला हुआ ज्ञान है। अतः वे जान गए कि ये भगवान आए हुए। ब्रह्मा जी कैसे जान गए कि ये भगवान है, इसी बात को बताने के लिए ब्रह्मा जी के यहां विशेषण दिए जा रहे हैं, अजह स्वराट। स्वराट का अर्थ स्वेनैव राजत इति स्वराट, जिसका ज्ञान अपने आप है। इस संसार में जो ज्ञान होता है किसी को तो कई लोग मिल करके सिखाते हैं, वो भी थोड़ा ज्ञान होता है। यहां पर सबसे पहले मां शिक्षा देती है, कुछ सिखाती है, पिता कहना या चलना खाना बोलना जो भी। कुछ काल के बाद पिताजी सिखाते हैं, फिर और परिवार के लोग सिखाते हैं, इसके बाद स्कूल जाता है तो वहां कई शिक्षक मिलकर सिखाते हैं, इसके बाद हाई स्कूल में जाता है तो वहां कुछ लोग सिखाते हैं, फिर कॉलेज जाता है वहां सिखाते हैं, विश्वविद्यालय सिखाता है, कई लोग सिखाते हैं और इतने लोग मिल करके सिखाते हैं फिर भी इतना कम सीखता है। कोई ज्ञान नहीं। और ब्रह्मा जी केवल भगवान के द्वारा सिखाए हुए हैं और वो भी हृदय में ही, हृदय में संकल्प मात्र से भगवान ने सिखाया। और ब्रह्मा जी समस्त वेदों के विद्वान हैं, समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, परम विद्वान है। अतः वे समझ गए कि साक्षात भगवान जन्म लिए हैं कर्दम जी के यहां, और इसी कारण से वे मरीचि आदि ऋषियों के साथ कर्दम जी के आश्रम पर आए, जान गए। तो भगवान के आविर्भाव का अनुमोदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सभा जैन विशुद्ध ने चेतसा तत्चिकीर्षितम, तत्चिकीर्षितम भगवान सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करने के लिए, भक्ति की शिक्षा देने के लिए अवतार लिए हैं। तो भगवान की इस योजना पर, भगवान के इस प्लान पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न थे। भगवान इस काम के लिए इस संसार में आवे तो यह बहुत बड़ा काम है। जैसे नृसिंहदेव जन्म लिए, प्रकट हुए, क्या करने के लिए? बहुत सीमित काम उनका था, प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यपु का वध करना। लेकिन भगवान कपिल देव जो प्रकट हुए हैं, समग्र मानव जाति को या समग्र जीवों को भक्ति और ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए यह जो उद्देश्य था भगवान का, ये वास्तव में सभाजन स्वागत के योग्य था। भगवान गुरु के रूप में जन्म ले रहे हैं जीवों का परम उपकार करने के लिए, बहुत महिमामय अवतार है। कभी कभी भगवान गुरु के रूप में प्रवचन किए हैं, जैसे ऋषभ देव के रूप में, कपिल देव के रूप में, और भगवान स्वयं श्री कृष्ण तो ज्ञान का उपदेश करते ही रहते थे, गीता का उपदेश किए कुरुक्षेत्र में और प्रभास में उपदेश दिए द्वारका उनको, उद्धव जी को। वास्तविक ज्ञानी वास्तविक जानकार तो भगवान ही है, वही जो बोलते हैं तो सत्य है, परफेक्ट है, बाकी लोग तो झूठ बोलते हैं। यदि भगवान की बात को बोले तब तो सही बोलेंगे, नहीं अपने मन से बोले तो सरासर झूठ बोलते हैं। तो और लोग तो कितना सिखाने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं, ब्रह्मा जी तो अपने आप सीखे हुए व्यक्ति, इसीलिए भगवान के इस महिमा को समझ गए और भगवान के इस चिकित्सितम को, अभिप्राय को जानकर भूरी भूरी प्रशंसा किए। सभा जयन और वे कर्दन जी पर बहुत प्रसन्न थे। धन्य है जिसके घर में भगवान प्रकट हो रहे हैं। कर्दन जी इनके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मरीचि आदि भी पुत्र हैं। मरीचि आदि पुत्रों का विवाह कर्दन जी की पुत्रियों से होगा। इसमें लौकिक नियम नहीं देखना चाहिए कि एक भाई की लड़की का विवाह दूसरे भाई से हो रहा है। चूंकि ब्रह्मा जी से जो भी पुत्र हुए थे वो किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुए थे, जस प्रकट हुए थे, इसलिए उनमें लौकिक भाई का संबंध नहीं था। जब एक मां के पेट से कोई जन्म लेता है तो उसको भाई कहते हैं, और उस स्थिति में कभी भी बहन का विवाह भाई से नहीं हो सकता है, भूल करके भी कभी नहीं। या उसी परिवार में पौत्री हो तो उसका विवाह अपने पुत्र से नहीं हो सकता है, ये नियम है। परंतु ब्रह्मा जी से जो पुत्र हुए वो इस लौकिक नियम से नहीं थे। जैसे वो तो ऐसा हुआ जैसे इस घर से मान लीजिए एक लड़की निकले और एक पुरुष निकले तो कोई भाई बहन नहीं हो गए, ये समझना चाहिए। आगे प्रसंग आएगा इसलिए मैं इसका संकेत किया। तो भगवान के इस अभिप्राय का बहुत स्वागत किया ब्रह्मा जी ने और कर्दम जी पर बहुत प्रसन्न थे। प्रहिर्ष मारे रसु भी, ब्रह्मा जी की इंद्रियां बिल्कुल खिल गई, प्रसन्न हो गई, उनकी आंख, उनकी भाषा, कान, सब कुछ बहुत प्रसन्न थे और कर्दम जी से इस प्रकार कहने लगे। तो भगवान की प्रशंसा जैसे वे किए उससे भी बढ़ करके भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। पांच श्लोकों में कर्दम जी की प्रशंसा की है और तीन श्लोकों में देवहूति की प्रशंसा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त हैं और भगवान के साक्षात पुत्र हैं, वे कर्दम जी का गुण गा रहे हैं। इस प्रकार से अप्रसिद्ध किया जाता है जब कोई अपना पुत्र या अपना शिष्य भगवान की भक्ति में अग्रसर हो, विकास करे, तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः जन्मे संजगृहे वाक्यं भवान मानद मानयन्। हे तात, हे प्रिय पुत्र कर्दम, वास्तव में तुम दूसरों का सत्कार करते हो, बड़े लोगों को मान देते हो, तुमने मेरी बहुत पूजा की। यह पूजा का अपचिति का अर्थ है पूजा और पूजा का अर्थ है सम्मान। बेटा तुमने बहुत आदर दिया मुझे, बहुत सम्मान किया। क्या किया कि जन्मे संज गृह वाक्यम भवान मानद मानद, तुमने हमारी बहुत पूजा की, तुमने हमारा सत्कार किया। कैसे? निर्व्यलीकत, निष्कपटम, कपट छोड़ करके शुद्ध मन से तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। मैंने जो कहा उसको तुमने ग्रहण किया। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रिय पुत्र, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमने निष्कपट भाव से मेरे आदेश का पालन किया। ब्रह्मा जी ने कहा था कर्दम जी से, जब कर्दम जी ने पूछा कि पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि बेटा तुम विवाह करो और सृष्टि का विस्तार करो और भगवान की इस तरह से पूजा करो, भक्ति करो, ये करो, सब सिखाया था। उस बात से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न है। और शुरू में जो इनके चार लड़के थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन पर प्रसन्न नहीं थे। जब ये लोग प्रकट हुए ब्रह्मा जी के द्वारा, सबसे पहला बेटा, उस पर बहुत आशा लगी रहती है कि यज्ञ का पालन करेगा, और चारों को जन्म दिए तो वो लोग पूछे भी नहीं कि हम क्या सेवा करें। ब्रह्मा जी स्वयं ही गिर करके कहे कि सृष्टि करो मतलब ब्रह्मा जी से लोग पूछे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने जब कहा कि तुम लोग सृष्टि करो, इस समय सारा ब्रह्मांड खाली है, चाहता हूं कि स्वर्ग बढ़े, सृष्टि बढ़े, तो उन चारों ने कुछ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मतलब ऐसे नहीं, हम लोग सब करने वाले नहीं है, अपने हाव भाव से बता दिए कि यह बेकार बक रहे हैं, हम लोग ब्रह्मचारी रहेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, हम इस जाल में नहीं पड़ने वाले। ब्रह्मा जी इस आशा से पुत्र उत्पन्न किए कि सृष्टि विस्तार करना है, और फिर इस तरह से जवाब दे दिए। उनको बहुत दुख हुआ, बहुत क्रोध आया उन चारों पर, पिता की आज्ञा का इस तरह से उल्लंघन करने का क्रोध आ गया। लेकिन ब्रह्मा जी क्रोध को रोके, बदले में कुछ गाली गलौज नहीं किए उन लोगों को, नहीं तो कुछ नालायक बेहुदा आदि कह सकते थे, कुछ भी कहते, लेकिन चुपचाप रोक लिए, रोके क्रोध को। वाणी पर तो क्रोध नहीं आया, लेकिन उनके आंखों पर क्रोध आ गया। आंख से पता चल जाता है कि आदमी इस समय गर्म है कि ठंडा है, क्रोध का पता आंखों से चल जाता है। आंख पर क्रोध आ गया और उसी क्रोध में एक पुत्र उत्पन्न हुआ आंख से ब्रह्मा जी के, तो रो रहा था। रोते हुए उसने ब्रह्मा जी जब जन्म लिया तो रो रहा था, इसके बाद ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस बच्चे पर भी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ठीक है तुमने मुझसे पूछा कि क्या सेवा करे, बहुत अच्छा, तुम एक कार्य करो, सृष्टि करो, और तुम्हें मैं 11 पत्नियां दे रहा हूं, तुम 11 रूप से सृष्टि विस्तार करो। उन्होंने कहा जो आज्ञा, और उसके बाद वो सृष्टि विस्तार करने लगे, तो सब सांप बिच्छू भूत प्रेत यही थर्ड क्लास की सृष्टि से उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी उधर भजन में लगे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया अपने पुत्र के सृष्टि पर, तो देखे कि अनवांटेड पॉपुलेशन भर दिया, केवल जवन और म्लेच्छ यही भर गए इस तरह से। तब ब्रह्मा जी आए और रोके, बस 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 स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बंद करो बंद करो बंद करो, मैं नहीं जानता था कि इतना खराब सृष्टि तुम करोगे, बंद करो बंद करो। तब वो बेटा पूछता है तब क्या करे, ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या करो, तप करो, भगवान का भजन करो, और अब तुम्हारे सृष्टि करने का काम नहीं रहेगा, तुमको मैं प्रलय करने का डिपार्टमेंट दे रहा हूं। तब से रुद्र अब प्रलय करते हैं, अब सृष्टि नहीं करते। तो चार तो ऐसे जवाब दे दिए थे, और ये पांचवा जो निकला है तो सृष्टि किया लेकिन सब कंडम सृष्टि भर दिया। तब ये भगवान का ध्यान किए बहुत काल तक, और ये सब पुत्र उत्पन्न किए। तो उसमें कर्दम जी को भी उन्होंने उत्पन्न किया, तो कर्दम जी डायरेक्ट उनसे आज्ञा मांगे, उन्होंने आज्ञा दिया कि बेटा सृष्टि करो, विवाह करो। तो कर्दम जी भी दंभ कर सकते थे कि मैं भी ब्रह्मचारी हूं, मैं इस जाल में नहीं पड़ सकता है कि नहीं, लेकिन कर्दम जी अपने पिता की आज्ञा को अविचल रूप से माने, उसी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जन्मे संज गृह वाक्यम भवान मानद मानन, तुमने हमें मान दिया, मेरी आज्ञा को ग्रहण किया निष्कपट भाव से, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं बेटा, मैं हृदय से तुम पर प्रसन्न हूं, मेरा तुमने मान बढ़ाया। कर्दम जी वास्तव में इतना निष्कपट पुरुष थे, जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो भगवान से उन्होंने मांगा कि मैं विवाह करना चाहता हूं, और कृपया मेरे स्वभाव के अनुसार मेरी भक्ति में सहायता देने वाली कन्या मुझे दीजिए। भगवान से सीधा विवाह के लिए प्रस्ताव डाला, तो भगवान कहते हैं परसों आपका विवाह हो जाएगा, मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति को लेकर आपके आश्रम में आएंगे, आप स्वीकार कर लीजिएगा। इस विवाह को साक्षात भगवान ने कराया था, देवहूति और कर्दम के विवाह, और ब्रह्मा जी की आज्ञा का इन्होंने पालन किया। निष्कपट भाव से पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसमें कुछ चेंचा नहीं करना चाहिए कि ये गुरु ठीक नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। इनको समझाओ नहीं, ऐसी आज्ञा हमको क्यों दे दिए। अब वो अब शिष्य ही गुरु बन गया, शायद बिना सोचे गुरु ने कह दिया, कुछ विचार नहीं किए। ऐसे ऐसे कुछ न कुछ चेंचा लगा रहता, कुछ न कुछ रास्ता निकालते रहे। नहीं, उनके वाक्यों का ये अर्थ हो सकता है, उनके वाक्यों का ये अर्थ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसमें क्या अर्थ समझने गड़बड़ था। ब्रह्मा जी ने सीधा कहा कि सृष्टि करो, विवाह करो, सृष्टि की बहुत जरूरत है, तुम योग्य व्यक्ति हो। क्या इसमें समझने में दिक्कत थी? करदम जी ने इस तरह से अपने गुरु की पिता की आज्ञा का पालन किया तो एक दिन भगवान पुत्र बने। अगर इस सन्यासी हो गए होते शुरू से ही तो भगवान तो पुत्र नहीं बने होते ना। भगवान तो पुत्र बनेंगे गृहस्थों के ही, ब्रह्मचारी ऐसे ही सूखा रह जाएंगे। और कम से कम मान लीजिए भगवान न पुत्र बने तो भक्त को तो बनाना चाहिए, भक्त तो हो सकते हैं। और जितने भी ब्रह्मचारी जन्म लिए, कुछ भी जन्म लिए, वे लोग भी तो माता पिता से ही आए हैं ना। एक ऋण रहता है, पितृ ऋण उसको कहते हैं। पितृ ऋण तब खत्म होता है जब वह व्यक्ति शुद्ध संतान उत्पन्न करे, पुत्र उत्पन्न करे, तो उसका ये ऋण खत्म हो जाता है, नहीं तो ऋण बना रहता है। और वो ऋण तब जाएगा जब बहुत कठिन भजन करेगा व्यक्ति भगवान का। ये नहीं कि आराम से खाए पिए सोए ब्रह्मचारी रहे सब हो गए, ठीक नहीं। ब्रह्मचारी को बहुत तपस्या करनी चाहिए, बहुत भजन करना चाहिए, तब और सब ऋण उतरेगा। और सब जिम्मेवारी से पार हो गए, न माता पिता की सेवा कर रहे हैं, न परिवार की सेवा कर रहे हैं, न कुछ भी नहीं, कोई कुल खानदान के नियम नहीं, तो ये सब अपराध लगता है। तो अपराध तब जाता है जब भगवान के भजन में दिन रात सराबोर रहे, तब कोई बात नहीं। जैसे नारद जी संकादि के सब सराबोर रहते हैं। ऐसा नहीं कि नारद जी कहीं बीड़ा रह करके दो चार घंटा आराम कर रहे हो, नहीं। और कह दे आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया। ब्रह्मचारी का मतलब है सवेरे से शाम तक एकदम प्रयास, भजन में, भक्ति में, प्रचार में लगा रहे। तो उसका मन जब भगवान की सेवा में रस में अनुरक्त रहेगा तब संसार के भोग उसको खींच नहीं पाएंगे। एक बार पूछा गया था दयानंद सरस्वती जी से, वो बहुत स्वस्थ शरीर के थे, उनका शरीर भी बहुत बड़ा था, बिल्कुल स्वस्थ। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आपको काम वासना नहीं सताती है कभी? वास्तव में पक्का ब्रह्मचारी थे। पूछा गया उनसे आपको काम वासना नहीं सताती है? तो कहते हैं हमारे जी में इतना काम है कि उस काम को आने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो निरंतर 24 घंटा वो किसी न किसी कार्य में लगे रहते थे। यह काम तो तब आता है जब आदमी फालतू पड़ा रहता है, तब दुर्विचार मन में आता है। अगर निरंतर क्रिया में रहे, शुभ क्रियाओं में लगा रहे, तो उस काम को अवसर ही नहीं मिलेगा मन में आने का। तो ब्रह्मचारी का जीवन इस तरह से तपस्या का जीवन होना चाहिए, निरंतर लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, नहीं तो ये बहुत रिस्की जीवन है, कहीं भी गिर सकते हैं। मन विचलित हुआ तो गिरे ही। मन का गिरना ही वास्तविक गिरना माना जाता है। तो जो करदम जी ने दिखाया अपने पिता की आज्ञा का पालन करके, वही समीचीन मार्ग है वास्तव में। कितना फर्स्ट क्लास का गृहस्थ जिसके पुत्र भगवान बने, इस प्रकार के गृहस्थी पर लाखों सन्यासी न्योछावर करना चाहिए, वो तो किसी काम के नहीं। ये है गृहस्थी की शोभ। ब्रह्मा जी जो जगत गुरु हैं, सबसे बड़े वैष्णव, वो प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य हो बेटा तुमने मेरी पूजा की, सही पूजा की, निष्कपट भाव से जो तुमने मेरे वाक्यों को ग्रहण किया। अब इसी को सिद्धांत के रूप में कहते हैं, एतावतेव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्र कही वाढ़ित गौरवेण गुरोर वचः। बेटा, पुत्रों के द्वारा अपने पिता के प्रति, माता पिता के प्रति यही सबसे बड़ी सेवा है। ये बस इतनी ही सेवा है कि पिताजी अगर कुछ कहें, गुरु कुछ कहे, आज्ञा दे, तो कह दे वाढ़म, ठीक, जो आज्ञा, जो भी आज्ञा दे रहा है तो उसको ये कह दे शुद्ध भाव से, ठीक है मैं करूंगा, इस तरह से कह दिया और उनके बात को मान लिया, तो यही बस इतनी ही सेवा है। इसका अर्थ नहीं केवल मुख से कह दिया ठीक है और ना करे, मतलब वाढ़म का अर्थ है कि ठीक है, ठीक, जो कहते हैं वही करूंगा। ये तावती है वशुश्रूषा, बस इतनी ही सेवा, आज्ञा पालन कर देना, यही सबसे बड़ी सेवा है। वाढ़म, ठीक, ऐसा नहीं कह सकते अब तो आप गुरु हैं कह दिए तो हम क्या करें लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कुछ मेरी भी सामर्थ्य देखकर बोलिए मैं क्या कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं जो आज्ञा दी जाए कर दे। महाराज जजाति ने अपने छोटे पुत्र से कहा, पुरुष से, कि बेटा तुम बड़े भाइयों की तरह नान मत करना, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जवानी लेकर के मैं संसार का सुख भोगूं, तुम्हारे नाना ने मुझे असमय में बूढ़ा बना दिया, शुक्राचार्य, तो उन्होंने जैसा कहा है तुम अपनी जवानी दे दो, मैं जवान होकर के संसार का सुख भोगूं और मेरी बुढ़ापा ले लो कुछ काल के लिए। ये बात सुनकर के तुरंत ही पुरु महाराज ने कहा कि पिताजी मुझे इस बात से संकोच हो रहा है कि आपको कहना पड़ा, बिना कहे ही आपको दे देना चाहिए था। तो उस समय कहते हैं कि चार प्रकार के पुत्र होते हैं, तीन प्रकार के पुत्र होते हैं। वे कहते हैं एक असली पुत्र, उत्तम कोटि का पुत्र वो है जो पिता के संकल्प को जान करके उसे पूरा कर दे, पिता को जबान न चलानी पड़े, कुछ कहना न पड़े, वो जान जाए कि पिताजी ये चाहते हैं बस पूरा कर। उत्तमस चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तुम मध्यम, और पिता के कहने पर आज्ञा पालन करे, श्रद्धा से ही करे लेकिन कहने पर करे, तो सेकंड दर्जा का पुत्र है, वो फर्स्ट क्लास का नहीं। और थर्ड क्लास का बेटा कौन है, जो अश्रद्धया कुर्यात्, पिता की आज्ञा का पालन कर देता है लेकिन भार मान करके अश्रद्धा से करता है, ये थर्ड क्लास का बेटा है। और फोर्थ क्लास का बेटा है ही नहीं, जो पिता की आज्ञा का पालन बिल्कुल न करे, अश्रद्धा से भी जैसे तैसे भी किसी भी तरह से न करे, तो उसे पुत्र नहीं कहा गया है, उसे पिता का मूत्र कहा गया है, वो पुत्र पुत्र नहीं है वास्तव में, मल मूत्र जैसा है, जैसे पिता के शरीर से मल मूत्र निकलते हैं वैसे वो भी एक दिन निकल गए, वो बेटा नहीं। ये पुरु महाराज कह रहे और कहे कि मुझे बहुत इस बात से शर्म आ रही है कि आपको कहना पड़ा, ये देह तो आपका दिया हुआ है, तो इसकी जवानी आप ले लीजिए, जितना दिन इच्छा करे लीजिए, मैं आपके बुढ़ापा को ले रहा हूं, इतना कह करके पिता के बुढ़ापा को ले लिया। और कितने वर्षों तक, 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक जजाति महाराज युवक रहे और सबसे छोटा बेटा वो वृद्ध बन करके रहा। इस तरह से पिता का आदर करना चाहिए। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति ललायत है कि मैं ज्यादा भोग भोगूं, मैं बेटर भोग भोगूं, ये करूं वो करूं वो करूं, क्या भोग करके करेंगे, इसमें कोई सुख है नहीं। पुरु महाराज ने अपने पिता के बुढ़ापा को ले लिया और जवानी दे दिया, तो पुरु महाराज का जस फैला हुआ है संपूर्ण वैदिक ग्रंथों में। यहां तक कि ऐसे बेटा देखे गए जो कठिन से कठिन आज्ञा का पालन कर दिए, जैसे भगवान राम पिता ने कह दिए, कहे तो नहीं लेकिन कैकई को वचन दिए थे कि वर दूंगा, तो उसने मांगा राम को 14 वर्ष बन दे दो। तो भगवान अपनी इच्छा से पिता के धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या का राज छोड़ दिए और वन में चले गए। जमीन पर सोते थे, वन में फलने वाले कंदमूल फल खाते थे, नदियों का जल पीते थे, झरनों का। अयोध्या 14 साल नहीं आए, किसी गांव में नहीं गए। ये है सतपुत्र का काम, पिता के धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम छोड़ दिए। और परशुराम जी तो पिता की बात मानकर अपने मां का भी वध कर दिए। यद्यपि ये सब बातें सीखने लायक नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इतिहास बताता है कि पिता ने कह दिया कि इस दुष्टा को मारो। पहले उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को आज्ञा दिया, अन्य पुत्रों को आज्ञा दिया कि मारो इसको, मां को। तो बेटा कैसे मार सकता है अपने मां को? सब लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। तब जमदग्नि जी ने अपने छोटे बेटे को कहा, परशुराम को, तुम इसको मारो, इसका वध करो, और जो हमारी आज्ञा नहीं माने हैं इन सब भाइयों को भी मारो। और वो उठाए कुल्हाड़ी और मां का भी मस्तक काट दिए, भाइयों का भी काट दिए। और तब जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए, कहे कि बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुम इसे वर मांगो, जो भी चाहिए वर मांगो। तो परशुराम जी वास्तव में अपने पिता के प्रभाव को जान करके ही मां का वध किए थे और भाई का। तो उन्होंने वर मांगा कि मेरी मां जीवित हो जाए, ये भाई भी जीवित हो जाए, मैं यही चाहता हूं, और इनके गले का कटा हुआ निशान बिल्कुल न रहे, और इनको जीवन भर ये याद नहीं आवे कि मैंने इनको मारा था। तो जमदग्नि जी ने कहा ठीक है ठीक है। तो मां भी जी गई और भाई भी जी गए सब भगवान के। लेकिन यहां यह बात कही जा रही है कि पिता की आज्ञा का पालन परशुराम जी ने किया। इधर विवेक रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पिताजी जो कुछ भी कह दे तो बस पाल दे, कुछ सेंस होना चाहिए। नहीं तो अगर मान लो पिता कह दे इसको मारो तो जिलाने की शक्ति तो पिता में है नहीं, कुछ आज्ञा का पालन नहीं किया जा सकता। अगर पिताजी कहे कि एक बोतल खरीद कर लाओ, शराब लाओ, तो पुत्र अगर न खरीदे तो कोई पाप नहीं होगा, है ना? उसके बदले कोई भगवान का प्रसाद ले जाकर के दे। इस तरह से पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि पुत्रों के द्वारा पिता की, गुरु की यही सबसे बड़ी सेवा है कि वो कुछ कहे तो कहे कि ठीक। इस पर एक प्रश्न उठाया गया, मान लीजिए वो असमर्थ हो पूरा करने में, बेचारा कमजोर है नहीं पूरा कर पाया, तब तो ब्रह्मा जी इसी बात को कह रहे ठीक है, आखिर उसने स्वीकार किया ना बेचारे की शक्ति नहीं थी, एक बार शुद्ध हृदय से कहा न वाढम, ठीक है आप जैसी आज्ञा करें, और आज्ञा पालन की शक्ति नहीं है। जो शक्ति नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन जब शुद्ध हृदय से कह दिया कि मैं करूंगा और अपना प्रयास भी किया, जथा शक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति है उतना पिता की या गुरु की आज्ञा के पालन का प्रयास किया, तो ठीक है, उसकी सेवा कंप्लीट मान ली जाएगी। और तुमने तो करके दिखा दिया। इमा दुहितर सत्यस्तव वत्स सुमध्यमा स्वर्ग में तम प्रभा वैश्वै ब्रह्मयिष्यन्तनेकधा। अब कह रहे हैं उन बच्चियों को देख करके ब्रह्मा जी, जो कर्दम देवहूति से उत्पन्न हुई थी, इमा दुहितर सत्य, ये जो तुम्हारी कन्याएं हैं ये सभी परम साध्वी हैं, शुद्ध हैं, और हे पुत्र ये परम सुंदरी है, सुमध्यमा, इनका मध्य भाग क्षीण है, मतलब कटी पतली कमर है। इसके द्वारा ब्रह्मा जी उनके सौंदर्य का वर्णन कर दिए एक शब्द द्वारा, कि शरीर की दृष्टि से भी ये बहुत सुंदरी है, और आचरण चरित्र की दृष्टि से सत्य सती है, बहुत शुद्ध है, परम सुंदरी हैं और ये प्रभाव ही अपने वंश द्वारा वंश वृद्धि अनेकधा वंश वृद्धि द्वारा अनेक प्रकार से वंश की वृद्धि करके इस सृष्टि का विस्तार करेंगी। तो ब्रह्मा जी मानो अभी आशीर्वाद दे रहे हैं कि जितनी पुत्रियां हैं ये कन्याएं हैं इनका विवाह होगा तो इन्हें भी बहुत बहुत संतान होंगी और इस तरह से इस विश्व सृष्टि में इनका बहुत बड़ा सहयोग होगा। अनुसुईया भी एक बेटी थी देवहूति की नौ में से और अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी बनेगी। इस आएगा आगे वर्णन की कौन किसकी पत्नी बनी। ब्रह्मा जी स्वयं ही विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं कि ये तुम्हारी कन्याएं परम सुंदरी हैं और परम सदाचारिणी हैं, ये लोग अनेक प्रकार से वंश का विस्तार करेंगी, इस सृष्टि को बढ़ाएंगी। इसका अर्थ है आशीर्वाद है कि इनको भी पुत्र होंगे ये होंगे तो तुम इन्हें इनके रुचि के अनुसार और सील के अनुसार इनको सौंपो ऋषियों को दो। अतस्तुम ऋषि मुख्येभ्यो जथा शीलम जथा रुचि आत्मजा परिदेह यद्य विस्तृणी ही जसो भुवि। अतः इनमें सृष्टि की शक्ति है, इनके वंश बढ़ेंगे, अतः तुम ऋषियों में जो प्रधान ऋषि जन हैं यहां आए हुए हैं महर्षि आदि, इनको जथा शीलम जथा रुचि बच्चियों के सील के अनुसार उनकी रुचि के अनुसार तुम कन्यादान करो और अपने जस का विस्तार करो। इस तरह से जथा शीलम जथा रुचि विवाह में ब्रह्मा जी ये दो बात प्रधान कह रहे हैं, जथा शीलम जथा रुचि, शील स्वभाव देख करके जिसका जैसा शील हो। वहां नौ ऋषि तैयार थे आए थे, ब्रह्मा जी ही लाए थे विवाह के लिए। जैसा मैं पहले कहा था कि जिस दिन जन्म हुआ कन्याओं का उसी दिन वो विवाह के योग्य थी, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इनका विवाह होना चाहिए किसके साथ, ऋषि मुख्येभ्यो जो ऋषियों में श्रेष्ठ है उनके साथ विवाह करना है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे जहां तहां बेमेल विवाह कर दे, विवाह में बहुत सावधान रहना चाहिए। कन्यादान एक बहुत बड़ा दान है तो योग्य वर को ही समर्पित करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रपोर्ट में आज से 40 वर्ष पहले और उसके बाद लिखा गया, उसके बाद कितना वर्ष बीत गया लगभग प्रभुपाद जी के कथनानुसार 65-70 वर्ष पहले कन्याओं के विवाह में बहुत कुछ देखा जाता था, ज्योतिष के अनुसार गणना की जाती थी और विवाह में इस बात की प्रधानता थी कि जिस कन्या में जिस वर में दैवी गुण है जिस कन्या में, तो उसका विवाह दैवी गुण वाले वर से ही किया जाता था और किसी में आसुर लक्षण है तो उसका विवाह आसुर स्वभाव वाले लड़के से ही किया जाता था। तो इस प्रकार का विवाह बहुत काल तक चलता है, बीच में कोई तलाक आदि की संभावना नहीं रहती है। लेकिन जहां लड़कों के स्वभाव को न देखा जाए, लड़कियों के स्वभाव को न देखा जाए, उनके संस्कार शिक्षा आदि को, और जहां तहां केवल धन देख करके और केवल रुचि देख करके विवाह कर दिया जाए तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। जब तक रहता है तब तक दुख से भरा रहता है और लास्ट में तो तलाक हो ही जाता है। जब तक रहता भी है तब तक भी रोज रोज कलकलम रोज रोज झगड़ा ही होता रहता। कुछ तो ऐसे स्त्री पुरुष होते हैं कि 24 घंटा में दो चार बार झगड़ा हो ही जाता है और फिर मिल जाते हैं दूसरे दिन के लिए, फिर झगड़ा और अंत में कोर्ट पकड़ लेते हैं, चलो अब सरकार फैसला करेगी ये कोई विवाह है तो नरक जैसा है वास्तव। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जथा शीलम जथा रुचि, शील स्वभाव के अनुसार विवाह होना चाहिए तो तुम कन्यादान करो तो तुम्हारा इतना बड़ा भाग्य है करदम कि तुम्हारी बच्चियां सती हैं और परम सुंदरी हैं, ऋषियों के साथ इनका विवाह होगा और पुत्रस्तु साक्षात ईश्वर एव, और तुम्हारा जो पुत्र है वो तो साक्षात भगवान। अब कर वेदाहम पुरुष वेदाहमाद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानम सेवधिम देहम विभ्राणम कपिलम मुने हे कर्दम। मैं जानता हूं जो तुम्हारा पुत्र है वह आदि पुरुष भगवान है, मैं जानता हूं वेद अहम। यद्यपि कर्दम जी को पहले से ही पता है, ये भगवान ने पहले से ही कहा था, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं मैं जानता हूं तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान। अवतीर्णम स्वमाया, ये अपनी योग माया से चित शक्ति से अवतीर्ण हुए हैं, बहिरंगा माया शक्ति से इनका कोई संबंध नहीं है जन्म के विषय में। मतलब भगवान का जो श्रीविग्रह है शुद्ध सच्चिदानंदमय है और अपनी माया शक्ति अपनी योग माया शक्ति से अपने आप प्रकट हुए हैं, इनका जीव जैसा जन्म नहीं हुआ, ये स्वतंत्र है। जीवों के सर्वाभीष्ट को पूरा करने के लिए ये कपिल नामक देह ग्रहण किए। भगवान जो स्वरूप प्रकट किए हैं इस स्वरूप का नाम है कपिल। कपिल नाम इसलिए पड़ा कि कपिल एक रंग माना जाता है, तो पीला रंग और लाल रंग के बीच में होता है, भूअर कहते हैं इसको, तो उस रंग का भगवान का शरीर था, इसीलिए उनको कपिल कपिल कहा जाता था। तो यह जो शरीर है उसके विषय में कहते हैं सेवधिम। सेवधिम का अर्थ है निधि, अर्थात सबके अभीष्ट को पूरा करने वाला। भगवान का यह अवतार वास्तव में बहुत उपयोगी अवतार है, बहुत उपयोगी अवतार। पृथ्वी का भार दूर कर देना, किसी असुर को मार देना, वो सब बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं है। सबसे श्रेष्ठ कार्य है मनुष्यों को शिक्षा देना, सत्य की ज्ञान देना। आज भी आप देख सकते हैं कहीं प्रशासन में गवर्नमेंट में कई विभाग होते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का सर्वोपरि महत्व होता है, एजुकेशन विभाग तो, और इसके बाद ही और किसी का है। वैसे पुलिस विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण है, पुलिस न रहे तो एक दिन में जनता रद्द हो जाएगी तो बहुत अत्याचार करेंगे, तो पुलिस है तो उसके डर से ठीक रहते हैं, वो तो जरूरी है, जेल विभाग जरूरी है, सब है, लेकिन सबसे आवश्यक जो विभाग है वो है एजुकेशन विभाग, विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय, इसकी बहुत जरूरत है। ये तो लौकिक शिक्षा के लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं तो दिव्य ज्ञान देने के लिए गुरु के रूप में भगवान कपिल देव का ऐसा उपयोगी अवतार है, उपादेय। इसीलिए इस देह को इस स्वरूप को ब्रह्मा जी सेवधिम कह रहे हैं। कर्दम जी से ही वो बता रहे हैं कि आपका पुत्र साक्षात भगवान है, मैं जानता हूं, अपनी चित शक्ति से स्वरूप शक्ति से अवतार लिए हैं और समस्त जीवों के हित के लिए उनका अभीष्ट पूरा करने के लिए भगवान का यह अवतार हुआ है। क्या हित करेंगे? ज्ञान विज्ञान योगे न कर्मणाम उद्धरण जटः हिरण्यकेशः पद्माक्ष पद्म मुद्रा पदाम्बुजः। ज्ञान जो शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रोक्तम, शास्त्र में जो लिखा गया है उसको ज्ञान कहते हैं, उसकी जानकारी किसी को हो ज्ञानी कहा जाए, और विज्ञान का अर्थ है अपना डायरेक्ट अनुभव शास्त्र के बल से ही, लेकिन अपरोक्ष जो अनुभव होता है डायरेक्ट साक्षात अनुभव, इसको विज्ञान कहते हैं। शास्त्रों में लिखी हुई बात का ठीक ठीक अनुभव हो तो इसको विज्ञान कहा जाता है, और शास्त्रों में जिस उपदेश का वर्णन है उसकी जानकारी होना उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान के द्वारा, ज्ञान और विज्ञान ही उपाय है, शास्त्र का ज्ञान और भगवान के भक्ति में अपना अनुभव। यह जो उपाय है, योग उपाय है, इसके द्वारा भगवान उद्धरण जटा कर्मणां जटा, कर्मों के जटा को, मूल को अर्थात वासनाओं को उत्पाटित करेंगे। प्रत्येक जीव के मन में बहुत सी वासनाएं हैं, बहुत सी इच्छाएं हैं, इनको जटा कहा गया। जटा का अर्थ जड़, जड़ मूल, वे मूल बहुत गहरे धसे हुए हैं। तो भगवान भक्ति का उपदेश करके, सांख्य शास्त्र का उपदेश करके इस काम जटा को, वासना को उखाड़ देंगे अपने प्रवचन से। बहुत गहरे कई सौ किलोमीटर में फैली हुई जटाएं हैं, जन्म जन्म में केवल वासना ही तो बनती है जीव के हृदय में, और वासनाएं ही वास्तव में कर्म कराती हैं। यह कर इंद्रिय तृप्ति के जितने भी कर्म है, ये कमाओ, ये करो, ये करो, ये करो, इसके पीछे है जटाएं अर्थात वासनाएं। जैसे किसी विशाल वृक्ष के विशाल जड़ों को, मूल को कोई उखाड़ दे तो वो वृक्ष फिर सूख जाता है, उसी तरह से भगवान का यह अवतार ज्ञान और विज्ञान रूप उपाय से मनुष्यों के कर्म की वासनाओं को उखाड़ कर फेंकने के लिए है, उद्धरण उत्पाटित करेंगे। इसमें भगवान के कार्यों का वर्णन किया गया, क्या करेंगे अर्थात प्रवचन करेंगे, और इनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। हिरण्यकेश पद्माक्ष पद्म मुद्रा पदाम्बुज, भगवान का शरीर ऐसा होगा जिसमें केश पीले वर्ण के बिल्कुल होंगे, सोना जैसा पीला। किसी किसी व्यक्ति के केश वास्तव में बिल्कुल उजले होते हैं, तो खास करके अंग्रेजों का उधर देखता हूं विदेश में, उनका केश काला काला नहीं होता है, बच्चों का भी युवक का भी केश वो कुछ भूरे रंग का होता है, पीला नहीं होता है, भूरे रंग का होता है। लगता हुआ कि सारा केस पका हुआ है, पके हुए जैसे भी नहीं रहता, दूसरे तरह का होता है। लेकिन भगवान कपिल देव का जो केस होगा वो हिरण्य सोना के समान, पद्माक्ष आंखें कमल के समान सुंदर होंगी हैं, और पद्म मुद्रा पदाम्बुज, उनका चरण कमल हमेशा पद्म की मुद्रा में रहेगा। पद्म मुद्रा का दो अर्थ है, पद्म की मुद्रा है, चरण चिन्ह है भगवान के चरण कमल में, ये कमल का चिन्ह है, उस कमल मुद्रा कहेंगे पद्म मुद्रा, अथवा पद्म के आकार में अपने पैरों को रखेंगे, मतलब पद्मासन लगाएंगे हमेशा, पद्म मुद्रा पदाम्बुज। भगवान कपिल देव हमेशा पद्मासन से बैठते हैं, पद्मासन का अर्थ दोनों पैरों को, इस पैर को इस पर चढ़ा लेना, इस पैर को इधर चढ़ा लेना और सीधा बैठना, इसको पद्मासन कहते हैं। तो भगवान कपिल देव के शारीरिक अवस्थिति का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि ऐसे रहेंगे, पद्म मुद्रा पदाम्बुज, इस रूप में बैठ करके पद्मासन पर भगवान ज्ञान का उपदेश करेंगे, और इसके द्वारा जीवों की कर्म वासना को उखाड़ कर फेंक देंगे, भोग वासना। इसलिए यह अवतार वास्तव में बहुत उपाध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह श्लोक जो है ये देहूति को कह रहे हैं, यहां तक कपिल देव को कहे थे बिभ्राणम कपिलम मुने, इधर से पांच श्लोक, और ज्ञान विज्ञान योग है ना, कर्मणाम उद्धरण जटा हिरण्य केश पद्माक्ष पद्म मुद्रा पदाम्बुज, इसमें क्रिया का वर्णन नहीं है, इसलिए आगे से इस श्लोक का संबंध है। तो संबोधन करके कहते हैं, एष मानविते गर्भम प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिम छित्वा गांभीचरिष्यति। हे मानवी, हे मनु की पुत्री देवहूति, ये पहला श्लोक, इसके पहले का श्लोक भी देवहूति से ही कहे हैं और यहां स्पष्ट संबोधन कर रहे हैं। हे मानवी, हे मनु नंदिनी, एष कैटभार्दन ते गर्भम प्रविष्ट, कैटभ का वध करने वाले भगवान विष्णु तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किए, कैटभार्दन का यहां अर्थ क्या है? वास्तव में कैटभ नाम का असुर ब्रह्मा जी से वेद चुरा करके ले गया था। ब्रह्मा जी का वेद चुरा करके ले गया था। वास्तविक अर्थ यह है कि कैटभ अविद्या का ही एक दूसरा रूप है, वो ब्रह्मा जी के ज्ञान को तिरोहित किया था। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी लाइब्रेरी में ग्रंथ रखे थे उठाकर ले गया था। ब्रह्मा जी को यह सब जरूरत नहीं थी पढ़ना रखने की पढ़ने की ये सब, लेकिन बात बताने के लिए कि ब्रह्मा जी आलस्य में तमोगुण में वेद को भूल गए। तो वास्तव में अविद्या आलस्य या तमोगुण एक असुर के रूप में हुआ, तो ऐसा दिखाया जाता है कि वो चुरा करके ले गया, चुरा करके ले गया, तो भगवान ने उसका वध किया। तो यहां पर भी भगवान अज्ञान का नाश करेंगे, इसीलिए कैटभार्दन कहा गया है। कैटभ का नाश करने वाले भगवान विष्णु तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किए हैं, तुम्हारा पुत्र बने हैं और तुम्हारा गुरु भी बनेंगे। क्या करने के लिए? अविद्या संशय ग्रंथिन छित्वा, ये अविद्या संशय ग्रंथि का छेदन करके फिर पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे। अविद्या संशय ग्रंथि का क्या अर्थ है? वही अर्थ है कि ग्रंथि क्या है? अविद्या स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वरूप का ज्ञान अविद्या है। और संशय का अर्थ है देह में आत्मबुद्धि, मिथ्या ज्ञान, जितने प्रकार के समझ है, जितने प्रकार का मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या अभिमति है, इसको संशय कहा गया है। यह संशय का अर्थ डाउट नहीं हुआ, संदेह नहीं हुआ, यह संशय का अर्थ है ठीक विपरीत ज्ञान, वास्तव में ज्ञान नहीं है। तो अविद्या स्वरूप का को याद नहीं रखना और भिन्न वस्तु को ही अपना स्वरूप मान लेना, इसको संशय कहते हैं। तो यह है ग्रंथि, इसका भगवान प्रवचन द्वारा छेदन करेंगे, तुम्हारा तुम्हें उपदेश करेंगे और इसके बाद पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे। अब भगवान की सर्व मान्यता का वर्णन कर रहे हैं। अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्येषु सम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम गंताते कीर्तिवर्धन। ये समस्त सिद्ध गणों के अधीश्वर होंगे और जितने भी सांख्याचार्य हैं, जितने ज्ञानी हैं, भक्त हैं, सब इनका बहुत आदर करेंगे। भगवान कपिल सुसम्मत सुपूजित, इनकी बहुत पूजा करेंगे, आदर करेंगे और लोक में इनका नाम होगा कपिल। ब्रह्मा जी अभी इनिशिएशन दे दिए, आखिर भगवान का भी कोई गुरु होना चाहिए ना। तो भगवान तो अपने बेटा के बेटा बने हुए हैं, तो ब्रह्मा जी तो ऐसे ही गुरु हो गए। तो भगवान के दादा तो ब्रह्मा जी हैं, व्यवहार में लीला में वास्तव में तो कोई भगवान से बड़ा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी के वंश में भगवान प्रकट हुए हैं, तो इसलिए उनको नाम देने में कोई हिचक नहीं। कहते हैं लोक में इनका नाम कपिल विख्यात होगा, तो ब्रह्मा जी ने नामकरण कर दिया और ये तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेंगे, तुम्हारा नाम बढ़ेगा कि भगवान तुम्हारे पुत्र बने और तुम्हें ज्ञान दिए। तो मैत्रेय जी कहते हैं तौ आश्वास जगत स्रष्टा कुमार सह नारद हमसो हमसे न जाने न त्रिधाम परम जय। इस प्रकार कर्दम और देवहूति को आश्वासन दे करके और आज्ञा दे करके ब्रह्मा जी अपने चारों कुमारों के साथ सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन चारों के साथ वे चले गए और सह नारद, नारद जी को भी। इसका अर्थ है कि चारों कुमार भी आए थे यहां ब्रह्मा जी के साथ और नारद जी भी आए थे, और ये लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो इनको ब्रह्मा जी विवाहोत्सव में नहीं रहने दिए। विवाह का उत्सव चालू होने से पहले कहे चलो, ब्रह्मचारी को विवाह उत्सव में नहीं भाग लेना चाहिए। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं वे, और जो अभी नैष्ठिक नहीं है अभी इस आशा में है कि आगे चलकर हम भी व्हाइट हो जाएंगे, तो उनकी बात दूसरी है। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं, निष्ठा के साथ जो ब्रह्मचारी रहे तो उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते। तो नारद जी तो अब पक्का नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, सारा ब्रह्मांड जानता है, और जो ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र थे चार, वो तो ऐसे ही नंग धड़ंग रहते हैं, दिव्य चिन्मय शरीर वाले, और उनका तो सब लोग जानते हैं कि इन्होंने तो रिफ्यूज कर दिए कभी भी विवाह नहीं करने के। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए तो अब मैरिज सेरेमनी में नहीं रहना है, क्या हो जाएगा, बहुत हर्ज हो सकता है, खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, दोनों तरफ से एक्सीडेंट होने का डर रहता है। वृंदावन में एक उड़िया बाबा रहते थे, इसी उड़ीसा देश के थे, तो उन्होंने कहा है कि विरक्तों को विवाह में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विवाह जो कर रहा है उस पर भी खतरा हो जाएगा और जो गया है देखने उस पर भी खतरा हो जाएगा, दोनों गड़बड़ी हो सकती। उनको एक बार इनवाइट किया था किसी ने कि आप हमारे लड़की के विवाह में आइए, तो उन्होंने कह दिया नहीं, हम नहीं जाते। क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मचारी या विरक्त साधु जाएगा विवाह उत्सव में, तो कहीं उसके मन पर यह असर हो जाए वर को देख करके कि ये कितना सुखी है, या स्त्री के साथ रहेगा, इसको भोग मिलेगा, ये मिलेगा, मैं तो बाबा जी बन करके बेकार मर रहा हूं। मान लीजिए अगर उसके मन में ये बात आ गई देख करके, तो ये तो गया दुनिया से, इसका भजन का सुख गया। और कहीं उस लड़के के मन में आ जाए जिसका विवाह हो रहा है, वो देखे साधुओं को तो कहे कि अरे ये कितने सुखी हैं, और मैं तो जाल में पड़ने जा रहा हूं, तो उसका भी काम बिगड़ा और साधु का भी बिगड़ गया। इसलिए अलग अलग रहो, उसको करने दो विवाह और तुम अपने भजन में रहो। बिगड़ सकता है ना, देख करके साधु का सुख कितना एकांत में है, अकेले है, राम राम कर रहा है, हरे कृष्ण जप रहा है, कितना सुखी, और मैं तो घर गृहस्थी का बहुत बड़ा भार लेने जा रहा, तो कहीं वो विवाह आसन से उठकर भाग जाए तब, और वो कहे कि हम भी आप लोगों के साथ ही रहेंगे, हम नहीं जाल में पड़ेंगे, तो उसका भी नाश हुआ वर का भी, और साधु के मन में अगर कहीं उसके सुख के प्रति स्पृहा हुई तो ये दुनिया से गया, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी एक कथा है कि समर्थ रामदास स्वामी जो शिवाजी के गुरु थे, उनका विवाह निश्चित हो गया था, वो गए थे ससुराल, विवाह के समय जो पाणी ग्रहण करना था तो उसके पहले कुछ क्रियाएं की जाती है, तो ब्राह्मण ने कहा सावधान, सावधान के मतलब हल्ला मत कीजिए और कोई दूसरा मंत्र न पढ़े, सुनिए हम जो क्रिया कर रहे हैं और पाणी ग्रहण करना है। जब यह बोला गया सावधान, ब्राह्मण ने बोला, तो समर्थ रामदास के मन में यह आया कि अरे बाप रे, भगवान सावधान कर रहे, बहुत भारी बंधन में बंधने जा रहा हूं, बस वो उस आसन से उठे और भाग गए। ये सब तो घटना, और ऐसे भागे कि वो तो बहुत बलवान थे, कोई पीछा कर नहीं पाया, बहुत तेज गति से भागे, भाग करके वन में चले ही गए, अब कौन खोजने जाए। भाग गए, सकेवल सावधान बोलने पर भाग गए। विवाह कराने के लिए सावधानी बोला गया, लेकिन सावधान बोला गया लेकिन भाग गए। इसीलिए सन्यासी को, ब्रह्मचारी को विवाह में भाग भूल कर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उनके फंसने का डर रहता है। भले बाहर रूप से विवाह न कर पाए लेकिन उनका मन उलझ जाता है, उलझ जाता है, सोचते रहते हैं गृहस्थ कितने सुखी हैं, इनको अलाउंस भी मिलता है और ब्रह्मचारियों को तो कुछ नहीं मिलता है, बड़ा दुखद और सूखा जीवन है। तो उनको ऐसे स्थिति में नहीं रखना चाहिए, ब्रह्मचारियों को हमेशा भगवान की कथा में रहना चाहिए, और उनको अनुभव हो कि भगवान ने हमको बचा लिया इस जाल से, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मेरे समान कोई सुखी नहीं है। उन्हें अपने सुख में विभोर रहना चाहिए, और जो गृहस्थ बन रहा है उसको भी अपने सुख में रहने देना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मचारी पुत्रों को लेकर कहे चलो 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 हटो, तुम्हारे 9 भाइयों का विवाह होने वाला है। और क्या भाई के विवाह में भाई न रहे और खास बाप ही ले जा रहा है, चलो 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 हटो। सीखने योग्य बात है। ब्रह्मा जी को हंस कहा गया है, ब्रह्मा जी संसार का जो सार है उसको ग्रहण किए हैं, जैसे हंस पानी में मिले हुए दूध को ग्रहण कर लेता है। भगवान के परम भक्त हैं जो अपने हंसाकार विमान पर बैठाकर अपने 5 पुत्रों को और चले गए, वे हटा दिए। ये शिक्षा दी जा रही है, बहुत बड़ी शिक्षा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं कोई बात नहीं हम मैरिज के भोज खाएंगे। कभी कभी ऐसे ब्रह्मचारियों को खिलाया जाता है, कौन प्रसाद दिया है तो आज किसी का विवाह हुआ है उसने दिया है। विवाह का प्रसाद ब्रह्मचारी को नहीं खाना चाहिए। नहीं तो वो संस्कार घुस आएगा और फिर वो प्लान करने लगेगा अब क्या करूं। तो धीरे धीरे ये कहता है मैं ऑनेस्ट बनना चाहता हूं और मेरे लिए ये कठिन मार्ग है तो मैं सरल मार्ग पकड़ना चाहता हूं। इजी मार्ग है विवाह करके रहना। वास्तव में ब्रह्मचारी रहने की अपेक्षा गृहस्थ का जीवन इजी मार्ग है उस विषय में, इंद्रियों को वश में करने के विषय में कुछ न कुछ बहाना करने लगता है। तो आगे चलकर गुरु से कहता है मैं एक बात कहना चाहता हूं। कहने में तो संकोच हो रहा है, हमारे पिताजी कह रहे हैं कि तुम गृहस्थ बन कर रहो। पिताजी ये 15 वर्ष पहले नहीं कहे थे, अब पिताजी कहने लगे, फोन करने लगे ना, कि पिताजी नहीं मनोज जी फोन कर रहे हैं। अरे जब ब्रह्मचारी बने नैष्ठिक बने तो खुल करके भगवान की भक्ति करो, अपना आनंद दिखाओ जनता को। और नहीं गृहस्थ बनना है तो वो भी मार्ग है, बनना चाहिए, उसमें कौन रोकता है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी केवल धोती पहना करके रखे कि यहां तक कभी सिग्नल हरा हो सकता है। जब लुंगी पहन लिए, जब सन्यासी हो गए तो बंद स्टॉप, अब नहीं सोचेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुछ सन्यासी भी गृहस्थ होना चाहते, यही बहुत भारी आश्चर्य। और ब्रह्मचारियों में जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं उन्हें कभी भी नहीं सोचना चाहिए विवाह की बात, कभी नहीं। तो ब्रह्मा जी यहां पर बहुत क्लियर हिसाब रख रहे हैं, अपने बच्चों का विवाह है, घर में सब कुछ है, लेकिन और लड़कों को लेकर चले गए। उनके साथ गए, अगर ये कहा जाता कि नारद जी सनकादिक अपने पिता के साथ गए, यह तथ्य उजागर होता कि ये लोग स्वयं ही उत्सुक थे कि हम विवाह नहीं देखेंगे, हम चलेंगे चलेंगे, पिताजी से कहे। लेकिन ब्रह्मा जी ने 5 को कहा कि चलो चलो बैठो, चलो चलो अब यहां विवाह उत्सव होने वाला है। भगा ले गए अपने पुत्रों को, तुम लोग ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी ठीक से रहो, ऐसा नहीं कि अब कल देह करके मरीची आदि का सुख और सनकादिक कहें कि हम भी इजी मार्ग पकड़ना चाहते हैं। हो सकता था ना, बहुत कुछ हो जाता है। भगवान शिव मोहिनी को देखे तो विवाह क्या उसी समय उसे पकड़ने के लिए चल दिए, इतने बड़े जितेंद्रिय काम को जला देने वाला व्यक्ति भी काम के बस में हो गए। इस विषय में नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को बहुत सजग रहना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के द्वारा ये बात यहां शिक्षा दी जा रही है। तो ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद अब करदम जी अपनी कन्याओं का विवाह करेंगे, दूसरे सिटिंग में इसको कहा जाएगा। हरे कृष्ण।